भाई बून को और भक्त मंडली, निश्चय ही ये मेरे लिए एक महान सौभाग्य है कि मैं फिर से सैन बर्नार्डिनो में फिर हूँ। ये स्थान बहुत से दिनों की यादें रखे है और ये सुनकर कि यहाँ आना है अब भी प्रभावित हूँ। क्यों? निश्चय ही आप प्रसन्नता का अनुभव करते हैं कि प्रभु ने इस ओर वर्षों पहले हमारा मार्गदर्शन किया। मैं वहाँ पार्किंग के स्थान में बैठा हुआ था, अभी और कोई घटना स्मरण करने का यत्न कर रहा था जो यहाँ हुई। एक श्रीमती आइजिकसन फिनलैंड में मेरी अनुवाद करने वाली थीं। उस फिनलैंड के अभियान में, और जब मैं वहाँ छोड़ने जा रहा था तो वो मेरी कार के पास आईं और बोली, आपकी फिनलैंड की आवाज़। और मुझे थोड़ा अचरज हुआ कि श्रीमती आइजिकसन यहाँ आसपास रहती हैं और मुझे ना ही मालूम था वो आज रात यहाँ नहीं होंगी। मैं समझता हूँ श्रीमती आइजिकसन और वो फिनलैंड से हैं। और दूसरी विशेष बात जो मुझे स्मरण आई, उस होटल में जहाँ मैंने खाया वो परिवेशिका, कहीं आसपास में वे उसे एंटलर होटल कहते थे। मैं विश्वास करता हूँ ये ठीक है अब। और उस महिला को मैं उसके साथ प्रार्थना कर रहा था, वो भली महिला परंतु वो मसीह नहीं थी। उसे सभा में निमंत्रण दिया और उसने अपना बालक खो दिया था, और मैं विश्वास करता हूँ कि उसका पति, वे अलग थे और हम प्रार्थना कर रहे थे कि उसका पति से मिलाप हो जाए या वे दोनों एक साथ हो जाएं। इसलिए मुझे थोड़ा अचरज है यदि वो यहाँ पर उपस्थित हो सके। और फिर दूसरी घटना हुई, एक छोटा बालक जो कहीं से लाया गया था, लगभग एक दिन गाड़ी चलाने की दूरी थी और ये मर गया था और माँ की गोद में था और वापस जीवन में लाया गया। क्या वो व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित था? और ये आता है, मैं विश्वास करता हूँ कि ईशोर प्रदेश से आसपास में यहाँ ऊपर था, और छोटी सी माँ सारी रात्रि गाड़ी में चली और पिता, और वे बेचारी माँ वहाँ उदास बैठी थी, अपने मृत बालक को पकड़े हुए थी। और मैंने सोचा, ऐसा विश्वास, यदि मैं संसार का सबसे बड़ा ढोंगी था तो परमेश्वर इस माँ के विश्वास का सम्मान करता। छोटे बालक को अपने हाथों में पकड़े हुए इस प्रकार प्रार्थना कर रहा था, गर्म होने लगा, ये हिलने लगा, अपनी छोटी छोटी आंखें खोल दी। मैंने उसकी माँ को वापस कर दिया। इसलिए कि वे कहीं से थे, मैं नहीं सोचता कि वे पेंतिकोस्तल थे, वे बस, मैं विश्वास करता हूँ ये कोई कलीसिया से थे। मैं नहीं जानता यदि वे मसीह थे या नहीं, उनसे कभी नहीं पूछा। उस बालक के जीवन में फिर वापस आ जाने से मैं उत्साहित था। तब से भाई बून, नदी का पानी काफी नीचे उतर गया, परंतु हम अब भी उसी परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं जो कल, आज और सर्वदा एक सा है। चारों ओर देखा, भाई ली रॉय कोप को वहाँ बैठे देख रहा हूँ। बहुत समय के बाद उन्हें पहली बार देख रहा हूँ। पॉल, ठीक है, ली रॉय आपके पिता हैं, ठीक है। ओ रूस, अच्छा, ये मैं जानता हूँ, वो बहादुर सिपाही वहाँ है, वो वहाँ राजा के काम पर है। इसलिए मैं निश्चय ही आनंदित हूँ यहाँ पर, और युवा सेवकों को ये कहते हुए सुनते हुए कि वे सेवकाई से प्रेरित हुए जो कि यहाँ होते हुए हुई थी। ये ऐसी महान उत्तेजना है, और मैं विश्वास कर रहा हूँ कि जानते हुए कि हमारे पास लोग खड़े हुए हैं, हम अधिक समय नहीं रुकेंगे, हमें वे महान चंगाई सभाएं स्मरण हैं। तब मैं समझता हूँ कि एक भाई यहाँ पड़ोस में है, यही कहीं चंगाई अभियान चला रहा है, एक भाई ली रॉय जेनकिंस। मैं विश्वास करता हूँ कि ये ठीक बात है, और इसलिए मैं बहुत धन्यवादित हूँ, विश्वास करते हुए कि प्रभु उसे आशीष दे रहा है और उसे महान महान सेवकाई दे रहा है। ओ, मैं वास्तव में आज रात्रि सम्मानित अब अनुभव कर रहा हूँ कि इस प्रकार की कलीसिया में आया हूँ। मुझे सदा कलीसिया में अधिक अच्छा लगता है बजाय उन बड़े बड़े सभागारों में। सभागारों के विरोध में ऐसा कुछ नहीं है, परंतु आप जानते हैं, मैं, ये एक अंधविश्वास हो सकता है या मैं बस, मुझे सत्य सा प्रतीत होता है। देखा, वे आप उन सभागारों में जाते हैं जहाँ लड़ाइयाँ, कुश्तियाँ, प्रहसन और सारी चीजें चलती हैं। लगता है उनके चारों ओर प्रेत आत्माएं हैं, और अब ये अंधविश्वास सा प्रतीत होता है, परंतु ये ऐसा नहीं है। परंतु जब आप कलीसिया में आते हैं, आप अवसर, निश्चय ही आत्मिक मंडली है, ये ऐसा प्रतीत होता है कि आप अधिक स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, जैसे कि कुछ है, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर है। आप जानते हैं, ये भिन्न प्रतीत होता है। मैं नहीं जानता इमारत का क्या प्रभाव है, परंतु ये जहाँ लोग जमा होते हैं, ठीक है कि दूसरी जगह भी यही लोग होते हैं, परंतु उन बुरे स्थानों में हो सकता है मैं इस प्रकार सोच रहा हूँ। परंतु जो भी है, आज रात्रि यहाँ मैं आनंदित हूँ। और अब हम आपको अधिक देर तक नहीं रोकना चाहते, क्योंकि मंडली खड़ी है और कल रात्रि हम दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। मैं भी नहीं जानता कि कहाँ पर, यहीं आसपास में है। कहाँ? ऑरेंज शो ऑडिटोरियम, कल रात्रि की सभा के लिए। मैं ये बीच में है, मैं बिजनेसमैन की, फुल गॉस्पल बिजनेसमैन की झुंड की यात्रा में बोल रहा हूँ, जो कि मुझे समस्त संसार में बोलने का सौभाग्य है उनके लिए, और इसलिए हमारे बहुत प्रिय मित्रों ने हमें वहाँ आमंत्रित किया है और आज रात्रि हम सभा में आनंदित हैं। अब इसके पहले कि हम बाइबल खोलें, अब किसी में शारीरिक ताकत है कि इसको इस प्रकार से खोल सकता है, समझे? परंतु ये हमारे लिए वचनों को खोलने के लिए पवित्र आत्मा को लेता है, हमारी एक समझ खोलता है और वचनों को प्रकट करता है। मैं बाइबल में विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि ये परमेश्वर का वचन है। मैं विश्वास करता हूँ कि पृथ्वी या पृथ्वी के लोगों का किसी दिन इस वचन से ही न्याय होगा। ये विचित्र हो सकता है। अब इसमें बहुत से भिन्न विचार हैं। मैं अपने बहुत ही ईमानदार मित्र से बातें कर रहा था, अधिक समय नहीं हुआ, जो कि कैथोलिक है, और उसने कहा कि परमेश्वर संसार का कैथोलिक कलीसिया के द्वारा न्याय करेगा। यदि ऐसा है तो कौन सी कैथोलिक कलीसिया, समझे? इसलिए यदि वो मेथोडिस्ट के द्वारा न्याय करता है तो बैप्टिस्ट के विषय में क्या है, समझे? यदि वो एक के द्वारा न्याय करता है तो दूसरा नष्ट हो गया, इसलिए बहुत ही भ्रम है। परंतु हमें इसमें जाना है कि अपना सच्चा वक्तव्य ढूंढें, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर संसार का न्याय यीशु मसीह के द्वारा करेगा, और वो वचन है। संत यूहन्ना, एक आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ और हमारे मध्य में डेरा किया। और इब्रानी 13:8 ने कहा, वो कल, आज और सर्वदा एक सा है, और मैं विश्वास करता हूँ कि ये सत्य है। और अब मैं विश्वास करता हूँ कि आरंभ में परमेश्वर के अनंत होने के कारण वो सीमित है, यानी बल्कि असीमित है, हम सीमित हैं, उसकी बुद्धि इतनी महान है, और हम अपनी सीमित बुद्धि में उसकी महान असीमित बुद्धि को नहीं समझ सकते। परंतु इसलिए जब वो कुछ बोलता है तो हमें ये विचित्र मालूम पड़ता है, उसे वचन में कुछ विशेष कहते हुए सुनना, परंतु इसे तो घटित होना है। मैं विश्वास करता हूँ कि उसका वचन कभी टल नहीं सकता। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ये जानते हुए कि हम अपनी सीमित बुद्धि से उसके महान विचारों की व्याख्या नहीं कर सकते, वो अपने वचन की व्याख्या करता है, उसे किसी अनुवादक की आवश्यकता नहीं, वो अपने वचन की स्वयं व्याख्या करता है अपने समय में वचन को सिद्ध करने के द्वारा। मैं विश्वास करता हूँ आरंभ में परमेश्वर वो नूह अपने संदेश के लिए उस दिन का वचन था, और अब साथ में उसके बाद मूसा आता है। अब मूसा नूह का वचन नहीं ले सकता, वो नाव नहीं बना सकता और मिस्र से तैरा कर बाहर ले जाए, वहाँ नील नदी पर या प्रतिज्ञा के देश में आदि आदि। उसके संदेश ने नूह के दिनों में कार्य नहीं किया, वो परमेश्वर के वचन का भाग था, ये मूसा के द्वारा सत्य प्रमाणित किया गया। ना ही यीशु मूसा का वचन ले सकता था, और लूथर कैथोलिक कलीसिया के वचन का पालन नहीं कर सका, वेस्ली लूथर के वचन का पालन नहीं कर सका, और पेंटिकॉस्टल व मेथोडिस्ट का वचन नहीं ले सके। वे समझे, कलीसिया बढ़ रही है, प्रत्येक युग का वचन में एक भाग है, इसलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा अपना वचन प्रकट करता है, उसे प्रकट और प्रमाणित करता है, स्वयं ही दिखाता है कि ये उसी का वचन है, उन्हीं दिनों में घटित होता है जिसके लिए प्रतिज्ञा की गई है। यीशु ने कहा, उसने कहा, यदि तुम मेरा विश्वास नहीं कर सकते तो मेरे कार्य का जो मैं करता हूँ उनका विश्वास करो, क्योंकि वे गवाही देते हैं कि वो कौन था। देखिए, यदि कोई वचन को जानता है, अब वो इतनी विचित्र रीति से आया, इतना अपरिचित कि लोगों ने उसका विश्वास करना ना चाहा, क्योंकि वो मनुष्य होकर स्वयं को परमेश्वर बनाता था। इसलिए रूप में वो परमेश्वर था, परमेश्वर मसीह में था, संसार को स्वयं से मिला रहा था, और इन कार्यों को कोई नहीं कर सकता जब तक कि परमेश्वर उसके संग ना हो, जैसा कि हम जानते हैं निकोदिमस ने ये कहा, यही सनेद्रीन विश्वास करते थे। अब हम जानते हैं कि वो वचन था, यदि वे वचन को जानते होते, उसने कहा, यदि तुम मूसा को जानते होते तो तुम मुझे भी जानते, क्योंकि मूसा ने मेरे विषय में लिखा है। और हम देखते हैं, यदि उन्होंने वचन में पीछे देखा था तो देखते हैं मसीह को क्या करना है, और वे प्रमाणों के द्वारा जानते हैं कि परमेश्वर मसीह के द्वारा संसार को स्वयं में वापस ले रहा था, और मसीह की सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा कर रहा था जो उसे करना था। यीशु उस वचन को रखता था, उस वचन को उस दिन के लिए जीवित कर रहा था, और मैं इसी बात का विश्वास करता हूँ आज जिसमें हम जीवित हैं, परमेश्वर अपने वचन की गवाही रखता है, जो उसने कहा उसे प्रमाणित करने के द्वारा वो करेगा। अब हम ये जानते हैं कि ये दिन उद्धार का है, जहां परमेश्वर मनुष्य को संसार से बुला रहा है, पाप के जीवन से सेवा के जीवन में। और उस दिन की परमेश्वर अपना आत्मा ऊंचे पर से उंडेलता है, महान चिन्ह और आश्चर्यकर्म आज की सेवकाई में साथ साथ हैं। ये है जबकि पिछली और अंतिम वर्षा एक साथ गिर रही है, और हम जानते हैं कि बड़े बड़े चिन्ह और आश्चर्यकर्म होने हैं, जो कि बहुत से बड़े बड़े नामधारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया। परंतु मैं इन खुले हुए दरवाजों के लिए बहुत ही धन्यवादित हूँ जो मुझे मिले थे कि भीतर जाऊँ और इस प्रकार के नवयुवक जैसे आपके पास्टर हैं, उनकी प्रेरणा दी। ये उनके लिए कारण है। जैसे कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और जानता हूँ कि मेरे दिन गिने हुए हैं, और अब ये जानता हूँ कि युवा पुरुष इस संदेश को ले सकते हैं और प्रभु के आगमन के होने तक फैलाते रहें। यदि वो मेरी पीढ़ी में नहीं आता, जो कि मैं उसको देखने की आशा करता हूँ, मैं प्रतिदिन उसकी प्रतीक्षा करता हूँ, देखता हूँ, स्वयं को उस घड़ी के लिए तैयार कर रहा हूँ। अब हम इस पुस्तक के पढ़ने से पहले लेखक से बात करें, जैसे कि हम अपने सिरों को झुकाते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपके आभारी हैं कि आज रात्रि जीवित हैं, इस महान नगर में वापस आए हैं, यहाँ पहाड़ों के दृश्य में बैठे हैं, ऊपर देखते हैं और बर्फ देख रहे हैं, और इस समय नारंगी फूलों की बहार। कितना शानदार संसार आपने हमें रहने को दिया, और कैसे हम देखते हैं कि मनुष्य ने गड़बड़ की है और संसार में व्यवहार किया है। पिता, ये हमें अपने में लज्जित करता है। आज रात्रि हम यहाँ अपना भरसक यत्न कर रहे हैं कि मनुष्य जो चीजें परमेश्वर ने की हैं, उसे देखें और जानते हैं कि उस पार कुछ और महान है। आज रात्रि हम उसे देखने पाए पिता, जैसे कि हम आपके वचन की ओर पढ़ने के लिए फिरते हैं, हम इसे पढ़ सकते हैं पिता, परंतु होने पाए पवित्र आत्मा इसे प्रकाशन के द्वारा प्रकट करे, क्योंकि हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब आप संभव है कि टिप्पणियां लेना चाहेंगे और सेवक के साथ वचन पढ़ते हैं, जैसे कि अक्सर वे इसे पढ़ते हैं, और ऐसा होता है जब मैं वर्षों पहले मुझे अपने पवित्र वचन नहीं लिखने होते थे और आदि आदि, परंतु तब से मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ। देखा, मैंने अभी अपने 25 वर्ष पूरे किए हैं हाल ही में, 25 वर्ष पहले, इसलिए ये थोड़ा सा खराब है, परंतु अब भी हर चीज पर मैं थामने का प्रयत्न कर रहा हूँ जो मैं उसके वचन पर करना चाहता हूँ, जब तक वो मुझे ना बुलाए। अब हम यूहन्ना का 14वां अध्याय निकाले, बहुत ही जाना पहचाना लेख, जो आज रात्रि हम पढ़ना चाहते हैं कि प्रभु चाहे तो इस मूल पाठ से। लगभग सभी इसे जानते हैं, ऐसा प्रतीत होता है बहुत सी बार ये अंतिम संस्कार की सभाओं में होता है। जब कभी समय होता है तो मैं अंतिम संस्कार की सभा में प्रचार करना चाहता हूँ, ये इस संसार के लिए होगा, इसे मरने दें और फिर जन्म लेने दें। संत यूहन्ना 14:1-7 से होते हुए, मैं विश्वास करता हूँ, मैंने यहाँ निशान लगा रखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, यदि तुम परमेश्वर में विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले आऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। जैसे समय बीतता जाएगा हम इसका फिर उल्लेख करेंगे, जबकि हम कलीसिया के लिए एक छोटी सी सीख देना चाहते हैं। पिछली बीती सांझ में यूमा एरिजोना में था, जहाँ अब मेरा घर है। मैं जब जेफरसनविले इंडियाना में रहने से पहले यहाँ पर था। अब मैं एरिजोना में, कुछ वर्षों पहले दर्शन के द्वारा मुझे वहाँ भेजा गया, और अब हम वहाँ के निवासी हैं। वहाँ मेरे पास कोई कलीसिया नहीं है। हमारे भाई ग्रीन हमारे साथ, उन्होंने एक आराधनालय स्थापित किया है, जहाँ असेंबली ऑफ गॉड शहर के नीचे एक झुंड में वे उठे हैं, और मैं सोचता हूँ वे सब भाई ब्रोक और भाई गिलमोर के साथ चले गए और इस आराधनालय को खुला छोड़ गए, और भाई पेरिग्रीन जो टेक्सास से हैं, उन्होंने जाकर उस स्थान को ले लिया जो कि हमारे साथ हैं। ये जानकर हमें प्रसन्नता हुई कि भाई ग्रीन ने उस आराधनालय को फिर से खोला जो बंद हो गया था। बीती रात्रि यूमा में क्रिश्चियन बिजनेसमैन के लिए बोलते हुए मैंने स्वर्गारोहण के विषय पर बातचीत करी। अब ये उनके लिए एक विचित्र विषय हो सकता है जो उनके मध्य में बोला गया उस प्रीतिभोज पर, परंतु उसमें अधिकांश मसीही थे। और इस अभियान में ये इस प्रकार से हुआ, कलीसिया में अब मैं ये कह सकता हूँ कि आप में से कितने मसीही हैं। संभवतः हर हाथ ऊपर उठेगा, आप मसीही हैं। और यदि हम मसीही हैं, मैं सोचता हूँ हमें आगे ध्यान देना चाहिए, हमें इस पर अनुमान नहीं लगाना चाहिए। हमें इस पर सूचित किया जा चुका है कि हमारा गंतव्य स्थान क्या होगा, और मैं आज रात्रि इस पर बोलना चाहता हूँ। और वो विषय जो होने जा रहा है, चीजें जो होने को हैं। और अब गत रात्रि स्वर्गारोहण पर बोल रहा था, इसलिए आज रात्रि मैं इस विषय पर बोलना चाहता हूँ, ताकि मैं इसे गत रात्रि के संदेश के साथ मिला सकूँ। अब एक स्वर्गारोहण होने जा रहा है, हम ये जानते हैं, ये भविष्य में होने को है। अब यीशु इस विषय में बोल रहा है, वो पहले गया है कि स्थान को हमारे लिए तैयार करे, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। अब वो यहूदियों से बात कर रहा था, कहा अब तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो मुझ पर भी करो, जैसा तुमने परमेश्वर में विश्वास किया मुझ पर भी विश्वास करो, क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। समझे? और परमेश्वर दूसरे शब्दों में, मैं और मेरा पिता एक है, मेरा पिता मुझ में वास करता है, ये मेरा पिता जो मुझ में रहता है वो कार्यों को करता है। परमेश्वर मसीह में था, स्वयं में संसार को मिला रहा था। ये उन यहूदियों के लिए सरल था जिन्हें पीढ़ियों से सिखाया गया कि परमेश्वर पर विश्वास करें कि एक महान अलौकिक परमेश्वर है। परंतु ये सोचकर कि परमेश्वर नीचे आया और स्वयं को व्यक्ति अपने पुत्र यीशु मसीह में प्रकट किया, परमेश्वर ने मांस की देह में वास किया, ये उनके लिए बहुत ही छोटा था की समझते। परंतु उसने कहा, अब जैसा तुमने परमेश्वर में विश्वास किया है तो मुझ में भी विश्वास करो, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान हैं और मैं जाता हूँ कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। यीशु का जीवन पृथ्वी पर समाप्ति पर था, उसने लोगों को दर्शाया और उन पर सिद्ध किया कि वो यहोवा देह में प्रकट हुआ है, अपने उन महान चिन्हों और आश्चर्य कर्मों से और बाइबल के उल्लेखों से उसने स्वयं अपना उल्लेख किया था, और उसने सिद्ध कर दिया कि वो परमेश्वर प्रकट हुआ था। अब उसने कहा, जब तुम मेरे जीवन का अंत होते हुए देखो तो इसके अंत का उद्देश्य है, और मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जा रहा हूँ ताकि जहाँ मैं रहूँ तुम भी रहो। इसलिए यीशु अपने चेलों को बता रहा है कि ये जीवन मृत्यु में समाप्त नहीं होता। अब कहते हुए कि ये अंतिम संस्कार का पाठ है, स्मरण रखें, मृत्यु ठीक हमारे सामने है और हम नहीं जानते कि इस भवन में आज रात्रि कुछ हो सकते हैं जो शारीरिक जीवन में बाहर ना जाएंगे। ये कितना अनिश्चित है। अब से 5 मिनट में ये हो सकता है कि कोई युवा, स्वस्थ युवा इस भवन में अब से 5 मिनट बाद एक मृतक हो, ये सत्य है। और फिर ये हो सकता है कि अब से 5 मिनट में कि हम में से प्रत्येक उसकी महिमा में हो, हम नहीं जानते, ये परमेश्वर के हाथों में है। यीशु ने कहा उसे स्वयं में नहीं मालूम कि वो समय कब होगा, परंतु ये केवल पिता के हाथों में है। परंतु वो उन्हें बता रहा था कि मृत्यु के पश्चात एक जीवन है, क्योंकि मैं जाकर स्थान तैयार करता हूँ ताकि उन्हें ले जाऊँ। उन्हें वहाँ दर्शाता है कि वो उनसे बातें कर रहा है कि इस जीवन के समाप्त होने के पश्चात एक जीवन है, और ये हम सबको क्या ही सांत्वना देता है कि जानकर कि इस जीवन के पूरे होने के पश्चात एक जीवन है जिसमें हम जाते हैं। और जैसे जैसे आप आयु में बढ़ते हैं तो ये आपके लिए और वास्तविक होता जाता है, और आप देखना आरम्भ करते हैं कि आपके जीवन के दिन समाप्ति पर है, और आप आरंभ हो जाते हैं और पास आने लगता है और उस महान घटना के लिए तैयार होने लगते हैं। और अब ये यही जीवन दूसरे संसार में निरंतर चलने वाला है, दूसरे स्थान में। आपका जन्म यहाँ पहले से तय था। मैं समझता हूँ कि आप इसका विश्वास करते हैं, आप में से प्रत्येक जानता है कि आपका जन्म पहले से तय था। क्या आप जानते थे कि आपका यहाँ होना कभी भी कल्पना या विचार नहीं था? हर चीज पहले से परमेश्वर के द्वारा तय थी, संसार के रचने से पहले कि आप यहाँ पर होंगे। अनंत परमेश्वर जानता था, और असीमित होने के लिए तो उसे हर कीट को जो पृथ्वी पर होना था जानना था, और वो कितनी बार अपनी पलक झपकेगा, ये अनंत है। समझे, आप हमारे छोटे से मस्तिष्क पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते कि अनंत का क्या अर्थ है। अनंत परमेश्वर वो सारी बातें जानता है, इसलिए उसके प्रबंध से कुछ भी बाहर नहीं है। यदि हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, हम जानते हैं कि हम कहां पर रह रहे हैं, हम उस घड़ी को जिसमें रह रहे हैं जानते हैं, हम जानते हैं कि आगे क्या है, हम देखते हैं कि क्या बीत गया। और परमेश्वर की पुस्तक यीशु मसीह का प्रकाशन है, वो युगों में होते हुए कार्य करता है। ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है और फिर जो उसकी प्रतिज्ञाएं जो आने को हैं, इसलिए उसकी सारी प्रतिज्ञाएं सच्ची हैं। परमेश्वर किसी चीज की पुष्टि किए बिना नहीं बोलता, हर वचन जो वो कहता है उसे घटित होना है। संसार के रचने से पहले कुछ लोग उत्पत्ति को मिला देते हैं, जब उसने कहा परमेश्वर स्वयं ही दोहराता है, नहीं अब बस गलत समझ रहे हैं, समझे। परमेश्वर आरंभ में उसने कहा हो जाए, ऐसा हो जाए। संसार अव्यवस्थित अंधकार में था, यहाँ तक कि जब उसने कहा उजियाला हो जाए, हजारों वर्ष बीत गए होंगे इसके पहले कि उजियाला हो, परंतु जब वो ये बोला तो इसे घटित होना था, इसे उसी प्रकार होना था, समझे। और उसने अपना वचन बोला, वे बीज जो जल के नीचे थे, जब उसने भूमि को सुखा दिया तब बीज ऊपर आए। वो कहता है वो होना ही है। उसने कहा, यद्यपि भविष्यद्वक्ता लोग, बीती सांझ मैंने इसका उल्लेख किया, जैसे हम यशायाह को लेते हैं, उसने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी, लोगों के मध्य में कौन मनुष्य सोचेगा कि ऐसे वचन कहे, एक कुंवारी गर्भवती होगी। परंतु क्योंकि वो एक भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का परावर्तन है, वो इस प्रकार का बना है कि वो अपना नहीं कह सकता जो बोलता है, वो परमेश्वर का वचन ही होना है, वो केवल परावर्तन है और वो परमेश्वर का मुख है। और इसलिए उसने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी, संभवतः वो इसे नहीं समझ सकता था, परंतु परमेश्वर उसमें होकर बोला, क्योंकि उसने ये प्रतिज्ञा की वो तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट न कर दे। तब जब उसने ये कहा, ये 800 वर्ष पहले कभी की ये घटित हो, परंतु इसे घटित होना ही है। अंततः परमेश्वर के उन वचनों ने एक कुंवारी के घर में लंगर डाल दिया और वो गर्भवती हुई और इमैनुएल को जन्म दिया। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, उसका नाम युक्ति करने वाला कहलाएगा, सामर्थ्य परमेश्वर, शांति का राजकुमार, अनंत काल का पिता। इसे इसी प्रकार होना था, क्योंकि परमेश्वर ने ये अपने भविष्यद्वक्ताओं के मुख से बोला और परमेश्वर के सारे वचन पूरे होने ही हैं। इसलिए हम जानते हैं कि यीशु स्थान तैयार करने को गया है कि लोगों को अपने पास एकत्र करे। वे कौन लोग हैं? मैं आशा करता हूं कि हम लोग आज रात्रि उन लोगों में का एक भाग हैं। मेरे मित्रों, यदि ये नहीं है, परमेश्वर ने एक मार्ग तैयार किया है, एक स्थिति, ताकि आप उसमें सम्मिलित हो सकें। यदि आप चाहते हैं, आप स्वतंत्र इच्छा में हैं, आप जैसा चाहें व्यवहार कर सकते हैं। परंतु अब ध्यान करें, इस संसार में जो आने वाला है, एक संसार है जो आने वाला है, जैसा कि आपका यहाँ जन्म, मैंने कहा आप तैयार किए गए, परमेश्वर जानता है कि आप यहाँ पर होंगे। और अब आप जानते हैं कि वो चीजें जो आपके माता पिता ने की, अब लोग सोचते हैं कि ये पीढ़ी से पीढ़ी में नहीं होता, परंतु ये होता है। यहाँ इब्रानियों की पुस्तक में, मैं विश्वास करता हूँ 7वें अध्याय में पौलुस यहाँ बोलता है, वो लेखक, मैं विश्वास करता हूँ वो महान घटना पर बोल रहा था जो कि अब्राहम के साथ घटी थी, कि उसने मलकीसदेक को दशमांश दिया जब वो राजाओं को मारकर लौटा आता था। और अब उसने कहा कि लेवी अब्राहम की देह में था जब वो मलकीसदेक से मिला, राजाओं को मारकर आ रहा था, और तब उसने ये मान लिया कि लेवी भी दशमांश दे रहे हैं जब वो अब्राहम की देह में था, उसका दादा का दादा, और वो लोगों के पापों को उनके बालकों में पीढ़ी से पीढ़ी देखता है जो उसके वचन का पालन नहीं करते। आप पहले से ही परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए हैं, परमेश्वर के संग कुछ भी अचानक नहीं हुआ, वो इस सब के विषय में जानता है, ये सब पहले से ही नियोजित है, बहुत पीढ़ियों से पहले ही योजनाबद्ध है, ताकि आज रात्रि आप यहाँ हो सकें। क्या आप ये जानते हैं? थोड़ा सोचिए कि आप एक बार, मैं इसे फिर से दोहराऊंगा, आप एक समय अपने पिता में थे, अपने पिता के अनुवंश में, वो उस समय आपको नहीं जानता था, न ही आप उसे उस समय जानते थे, परंतु आप देखिए, तब आप बोने की सतह पर डाले गए अपनी माँ के घर में, उस पवित्र विवाह बंधन से, और फिर आप अपने पिता की समान छवि में प्रकट किए गए, तब सहभागिता हुई। अब केवल एक ही मार्ग है कि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो सकते हैं, क्योंकि आपको होना है। अनंत जीवन आपके पास होना ही है और अनंत जीवन का केवल एक ही रूप है और वो परमेश्वर का जीवन केवल एक ही प्रकार है। अनंत जीवन का वो परमेश्वर था। वहाँ परमेश्वर का पुत्र होना आपको उसमें सदा होना। आपके जीवन का अनुवंश आत्मिक जीवन आज रात्रि परमेश्वर में है, पिता में, इसके पहले कि कोई अणु हो, समझे? और आप कुछ नहीं सिवाय कि जीवन के अनुवंश का प्रकटीकरण है जो परमेश्वर में था, परमेश्वर के पुत्र के समान। अब आप प्रकट हुए, उसका वचन आप में आने के बाद इस युग को ज्योति दे। आप अपने आप में परमेश्वर का जीवन प्रकट कर रहे हैं क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। इसलिए आप समझे मेरा क्या अर्थ है? समझे, आप उसमें थे, अब आप बनाए गए, आज रात्रि इस आराधनालय में बैठे हैं क्योंकि आपका कर्तव्य परमेश्वर को इस राष्ट्र पर और इन लोगों पर और इस पड़ोस पर जहां आप संबंधित हैं प्रकट करना है। आप जहां कहीं भी हैं, परमेश्वर जानता है आप यहां पर होंगे क्योंकि आपको उसका एक अनुवंश होना ही है या उसका एक गुण आपको होना है। यदि आप कभी हुए, यदि आपके पास अनंत जीवन है तो फिर ये सदा अनंत जीवन ही था और परमेश्वर इसके पहले कि पृथ्वी की नींव डाली गई थी जानता था कि आप यहाँ पर होंगे। और जब वचन या पानी वचन के जल से धोए गए आपके ऊपर पड़ा और ये एक जीवन में प्रकट हुआ। अब आप अपने पिता के साथ संगति करते हैं वैसे ही जैसे आप अपने संसार के पिता के साथ करते हैं, समझे? आप राजा के नागरिक हैं, नागरिक नहीं परंतु बालक, जीवित परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां। यदि ऐसा है तो अनंत जीवन आपके अंदर है, निवास करता है। अब फिर यदि ये था तो यीशु परमेश्वर की परिपूर्णता प्रकट हुआ। वो परमेश्वर की परिपूर्णता देह में था, इसलिए जब वो पृथ्वी पर आया और देह में प्रकट हुआ तब आप उसमें थे क्योंकि वो वचन था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ और हमारे मध्य में वासा किया। वचन देहधारी हुआ था इसलिए आप उसके साथ चले जब आप उसमें थे, जब वो पृथ्वी पर था। आप उसके साथ दुखी हुए और आप उसके साथ मरे, आप उसके साथ गाड़े गए और अब उसके साथ जी उठे और परमेश्वर के प्रकट किए हुए गुण स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। पहले ही जी उठे, नए जीवन में जी उठे और मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। ओ, ये बहुत ही अर्थपूर्ण है। इन दिनों में कलीसिया ये हमारे लिए बहुत ही अर्थ से भरा हुआ है कि स्वयं को स्थान में स्थिति अनुसार देखें यीशु मसीह में। अब यदि हम परमेश्वर के वे गुण हैं तो हम मतसारों के अनुसार जीवित नहीं रह सकते, तो हम नामधारिता से जीवन नहीं जी सकते। हमें वचन के द्वारा ही जीना है क्योंकि दुल्हन दूल्हे का भाग है जैसे कि कोई पत्नी अपने पति का भाग है। इसलिए हमें वो वचन की दुल्हन होना चाहिए। और वो वचन दूल्हा क्या है? इस घड़ी का प्रकटीकरण, दुल्हन न कि मत्सार या नामधारी परंतु परमेश्वर की जीवित वाणी, परमेश्वर के जीवित गुण संसार को परमेश्वर के गुण दर्शा रहे हैं दुल्हन के रूप में, जिसे इस घड़ी में प्रकट होना है जिसमें हम अब रह रहे हैं। मार्टिन लूथर गुणों को नहीं प्रकट कर सका जो हम प्रकट करते हैं क्योंकि वो आरंभ में था, पुनरुत्थान जैसे कि गेहूं का बीज जो भूमि में चला गया। अब हम इसका फिर उल्लेख करते हैं। आपने संभवतः वो पुस्तक पढ़ते हैं जिसमें उस जर्मनी ने मेरा उपहास उड़ाया है और कहा कि मैं धर्मानंदों में से धर्मांध हूँ और वो जो परमेश्वर कहलाता है उसमें वो पूर्णतः विरोधी था और परमेश्वर का भी उपहास उड़ाया। कहा एक परमेश्वर जो लाल सागर खोल सकता है और कहा अपने लोगों को बाहर ले आया और अपने हाथ कमर पर रखे हुए और उन लोगों को मरने और पीड़ित होने दिया अंधेरे युगों में, वे छोटे बालक सिंहों द्वारा खाए गए। आप देखते हैं सारी योजना, सारी कलीसिया दिव्य प्रकाशन पे बनी है। यीशु ने कहा संत मत्ती के 16वें अध्याय में, मांस और लहू ने नहीं ये तुझ पर प्रकट नहीं किया परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर ये प्रकट किया है। ये क्या था? एक प्रकाशन कि वो कौन था, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे, समझे? इस घड़ी में यीशु मसीह का प्रकाशन, न कि वो दूसरी घड़ी में क्या था, वो अब क्या था, बाइबल प्रकट करती है। ये दुल्हन में बढ़ रहा है उस पूरे कद तक। इसलिए गेहूं का बीज मसीह को भूमि में गिरना था, इसी प्रकार से कलीसिया को भी अंधकार युग में होते हुए भूमि में गिरना था। कोई भी जो भूमि में जाता है उसे मरना ही है, या वो उसको स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकता, स्वयं को फिर से उत्पन्न करना। महान कलीसिया जो उसने पेंतिकोसल के दिन पवित्र आत्मा के भेजने के द्वारा स्थापित की, उसे शहीद होने की पीड़ी सहनी ही थी, और धूल में मिल जाना, अंधकार युग में भूमि में जाना, और फिर से लूथर के युग में वापस आना, और यीशु मसीह की दुल्हन के पूरे कद में इस अंतिम दिन में आना, समझे? और कोई विधि नहीं है। इसलिए दुल्हन स्वर्गारोहण में आएगी, और ये पीछे से परमेश्वर के द्वारा योजनाबद्ध है। वो आरंभ से हर मनुष्य हर स्थान को जानता है, कौन व्यवस्थित रहेगा इस सब के विषय में, ये सब पहले ही तय है। परमेश्वर जानता था कि ये यहाँ होगा, और जब उसने इसी प्रकार बनाया ताकि जब हम वहाँ पहुँचे वो हमारे लिए स्थान बनाने चला गया, और जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो ये सब वैसे ही तैयार किया गया जैसे कि इस रात्रि तैयार किया गया है, जैसे ये समय तैयार किया गया है। जी हाँ, उसका महान पूर्व ज्ञान उसे ये सब चीजें बताता है पूर्व ज्ञान के द्वारा। वो सर्वव्यापी है क्योंकि वो सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञाता क्योंकि वो सर्वव्यापी है, इसलिए उसके पूर्व ज्ञान के द्वारा। अब वो पृथ्वी के ऊपर की हवा के समान नहीं हो सकता क्योंकि वो एक जीवन है, वो कोई कल्पित नहीं है, वो एक जीव है, वो रहता है, वो घर में भी रहता है, वो एक स्थान जो स्वर्ग कहलाता है वहाँ रहता है, और इसलिए उसके सर्व जीवन के द्वारा वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञाता, सारी चीजें जानता है, तब वो सर्वव्यापी है क्योंकि वो सारी चीजें जानता है। अब आप अपने जन्म से बढ़ते हैं। जब आप जन्मे और इस संसार में लाए गए, परमेश्वर जानता था कि आप इस पृथ्वी पर आने वाले हैं, और आप जन्म से परिपक्वता को बढ़ते हैं। वो बातें जो आपको अपने यौवन, लड़कीपन, लड़कपन में विचित्र लगती थीं, जैसे बालक के समान, अब बहुत वास्तविक लगती हैं। जब आप बालक थे तो आप नहीं समझ सकते थे, परंतु अब जैसे कि आप व्यस्त हो गए हैं, आप समझने लगे हैं और पाते हैं कि हर चीज ठीक व्यवस्थित थी, और आप इसका आपके लिए वास्तव में अब अर्थ है। ऐसे ही आपके आत्मिक जन्म में है। जब आप बालक होते हैं तो वे चीजें करते हैं जो आप नहीं समझते। वेदी पर आते हैं, आप अपना जीवन मसीह को देते हैं, आप विचित्र चीजें करते हैं, आप आश्चर्य करते हैं कि आपने ये क्यों किया, परंतु कुछ समय पश्चात जब समझदार होते हैं, एक समझदार मसीही, तब आप इसे समझते हैं। समझे? वहाँ कुछ है जो चुनता है। आप देखिए, आपने ये क्यों किया, आपका आत्मिक जन्म, आपका शारीरिक जन्म आपके आत्मिक की छाया है। ये इस जीवन में कैसे ठीक बैठता है? जैसे कि आप बढ़ते हैं, हर चीज इसमें ठीक बैठती है क्योंकि आप इसके लिए बने हैं। क्या ये विचित्र बात नहीं? जिस रात्रि आपने अपने उद्देश्य में लड़खड़ाए, उस तंबू वाली सभा में या कहीं कोने में कलीसिया, और जो कुछ प्रचारक ने प्रचार किया किसी विशेष विषय पर, और आप वेदी पर गिर पड़े, समझे? देखिए, परमेश्वर ये जानता था इसके पहले कि संसार की नींव पड़ी। ये आपको विचित्र लगता है, तब आपने ये क्यों किया, परंतु अब आप इसे समझते हैं और आप जानते हैं कि क्या घटित हुआ। ये आपके इस जीवन के इतना अनुरूप है और आने वाले जीवन में भी होगा। ये संसार और ये जीवन, जब आप समझदार होते हैं तो अग्रणीय प्रतीत होता है, हर हमारे साथ ठीक चलती प्रतीत होती है। मैं इसमें विश्वास नहीं करता कि कोई व्यक्ति यहाँ पर अचानक ही आ गया। अब जरा सोचें, जब आप यहाँ संसार में आते हैं तो हर चीज आपके लिए पहले से तैयार की जाती है, या बल्कि पहले से तैयार आपके लिए। मैं बिल्कुल नहीं समझता कि हम कैसे ये सोच सकते हैं कि एक परमेश्वर जो हमारे लिए अच्छी चीजें तैयार कर सकता है नहीं करेगा, कि हम उसमें विश्वास ना कर सकें। यदि वो हमें इस दुर्व्यवस्था में लाया जिसमें कि अब हम हैं, और यहाँ जीवन के लिए अच्छी वस्तुएं तैयार की हैं, तो हम आने वाले के लिए कितना अधिक विश्वास कर सकते हैं, अनंत चीजें। मैं कहता हूँ कि वे बहुत विचित्र प्रतीत होता है। मैं नहीं सोचता कि स्वर्ग एक स्थान है जिसके लिए मेरी माँ इसके लिए बताती थी। मैं विश्वास करता हूँ कि कलीसिया उसी से ही बड़ी है। 100 या 200 वर्ष पहले ऐसा सोचा जाता था। मैं सोचता हूँ पुराने लोग सोचते थे कि हर कोई जो मरा स्वर्ग चला गया और एक वीणा ले ली और वहाँ बादलों पर बैठ गया और वीणा बजाता है। अब वे जान गए हैं कि वहाँ एक स्थान था जो स्वर्ग कहलाया, परंतु वे यदि ऐसा था तो सारे संगीतकार हम पर ही होते, आप समझे? परंतु ये इस प्रकार का एक स्थान नहीं है। वहाँ वीणाएं नहीं बजाई जाती। मैं विश्वास करता हूँ कि बाइबल ऐसा नहीं सिखाती, परंतु ये एक धारणा थी। जब तक कि वचन की परिपूर्णता अस्तित्व में नहीं आई, या सात मोहरों का खुलना जो कि इस युग में खुलने की हमसे प्रतिज्ञा की गई, जो कि अब हम समझते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि स्वर्ग वास्तविक स्थान है, जैसा कि ये एक वास्तविक स्थान है, क्योंकि इस स्थान में परमेश्वर ने हमें बढ़ाना आरंभ किया है। और मैं विश्वास करता हूँ कि स्वर्ग एक स्थान है, ऐसी ही जैसे ये वास्तविक स्थान है, जहाँ कि हम अनंत के लिए नहीं बैठते और वहाँ बादल पर बैठे हैं और अपनी वीणा नहीं झंझनाते सब ये कहीं यहाँ से, परंतु हम एक वास्तविक स्थान में जा रहे हैं, जहाँ हम चीजों को करेंगे, जहाँ हम रहने जा रहे हैं, हम कार्य करने जा रहे हैं, हम आनंद करने जा रहे हैं, हम रहने जा रहे हैं, हम जीवन में जा रहे हैं, एक वास्तविक अनंत जीवन। हम स्वर्ग में जा रहे हैं, एक स्वर्ग लोक, जैसे कि आदम और हवा ने किया और रहे और खाया और अदन वाटिका में आनंद किया। इसके पहले कि उसमें पाप आए, हम वापस फिर से अपने मार्ग में हैं, ठीक वापस। पहला आदम हमें पाप में से होते हुए बाहर ले गया, दूसरा आदम धार्मिकता से होते हुए वापस हमें अंदर लाया, हमें न्यायोचित ठहराया और हमें वापस भीतर लाया। आप जो अब टेप को लेते हैं, न्यायोचित का संदेश मैं लेना चाहता हूँ, और आप टेप लेते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लें। मैंने इस पर बोला है यहाँ कुछ समय पहले। देखिए, आपके संसारिक माता पिता, इसके पहले कि आप यहाँ आते, वे जानते थे कि आप आ रहे थे, आपके आने की तैयारी की। जरा इस पर सोचें, आपके संसारिक माता पिता, जो कि संसारिक माता पिता केवल स्वर्गीय की छाया है। यदि हम जानते हैं कि कैसे अपने बालकों को अच्छे उपहार दें, तो स्वर्गीय पिता कितना और अच्छा जानता है कि अपने बालकों को अच्छे उपहार दे। यीशु ने ये वचन बोले हैं। उन्होंने आपके आने की तैयारियां की, उन्होंने छोटा खटोला बनाया या छोटी छोटी जूतियां और छोटे छोटे कपड़े आदि आदि। उन्होंने आपके आने की पूरी तैयारी की, इसके पहले कि आप पृथ्वी पर आते, तैयार किया। यीशु चला गया और हमारे वहां आने की तैयारी करने। अब ध्यान दें, मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान हैं। या हम, मेरा अर्थ शब्द जोड़ने का नहीं या इसमें से निकालने का, क्योंकि हम इसे करने के लिए नहीं है। प्रकाशित वाक्य 22 ने कहा, कोई भी जो एक शब्द मिलाएगा या इसमें से शब्द हटाएगा। परंतु मुझे इसे बनाने दें, मिलाने की तरह नहीं, बस एक बात को उभारने के लिए। मेरे पिता के घर में बहुत प्रकार के घर हैं। मैं विश्वास नहीं करता कि जब हम स्वर्ग पहुँचते हैं तो हम सब एक जैसे लगेंगे। मैं ये विश्वास नहीं करता कि हम सब गोरे होंगे या भूरे गहरे रंग के या छोटे या सारे बड़े या सारे दैत्य। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर अनेकता का परमेश्वर है। संसार ये प्रमाणित करता है, उसके पास बड़े पहाड़ हैं, छोटे पहाड़ हैं, उसके पास मैदान, उसके पास रेगिस्तान, उसके पास विभिन्न चीजें हैं, क्योंकि उसने जैसा चाहा वैसा ही बनाया। उसने ऋतुएं बनाई, गर्मी, शरद, वसंत, उसने ऋतुएं बनाई। ये दर्शाता है कि वो बहु अनुरूप का परमेश्वर है। उसने आपको भी बहुमुखी बनाया, कुछ पुरुष वास्तव में प्रचंड, कुछ वास्तविक में धर्म सैद्धांतिक की, और दूसरे भले, दूसरे दयालु, और आप विभिन्न प्रकार के लोगों को पाते हैं। और उसके राज्य में संत पत्रस को देखें और इंद्रियास के द्वारा न्याय करें, समझे। इंद्रियास प्रार्थना का योद्धा, सारे समय अपने घुटनों पर रहता, और प्रेरित पत्रस उनमें से था जिसने धधकते हुए प्रचार किया, और आदि आदि। और पौलुस ज्ञानी के समान, बहुत से भविष्यवक्ताओं के समान, या और कुछ, पीछे बैठे थे। और देखिए, मूसा ने पुरानी की चार पुस्तकें लिखी, जो कि उसने पुराना नियम लिखा, बाकी इसकी व्यवस्था और राजाओं और भजन संहिता और आदि आदि, और किसी ने भविष्यवक्ताओं को लिखा। परंतु मूसा ने व्यवस्था लिखी, बाइबल की पहली चार पुस्तकें, उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, व्यवस्था विवरण, और फिर पौलुस ने नया नियम लिखा। ये सच है, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना ने कार्य लिखे कि क्या घटित हुआ और आदि आदि। परंतु पौलुस ने व्यवस्था और अनुग्रह को अलग अलग किया और इसके स्थान पर रखा, समझे। वो नए नियम का लेखक था, उसने हमें नए नियम के लेख दिए और परमेश्वर के वचन को व्यवस्थित किया। अब ध्यान दें, बहुत से भवन, बहुत प्रकार के भवन, जैसे बहुत प्रकार के पहाड़, जैसे बहुत प्रकार की नदियाँ, सोते, झीलें। जब आप आए तो ये पहले यहाँ पर थे, क्योंकि स्वर्गीय पिता के अनुग्रह ने इन्हें यहाँ रखा। क्योंकि कुछ लोग पहाड़ पसंद करते हैं, कुछ लोग पानी पसंद करते हैं, कुछ रेगिस्तान पसंद करते हैं। देखिए, आप आ रहे हैं, वो आपका स्वभाव जानता था और आप क्या होंगे, इसलिए उसने इस प्रकार बनाया कि आप आनंदित हो सकें। और मैं सोचता हूँ ये शानदार पिता है, देखिए जानता है कि इस प्रकार से बनाया। मैं आनंदित हूँ कि उसने पहाड़ बनाए। मैं पहाड़ पसंद करता हूँ, मुझे ये पसंद है। जहाँ दूसरे ओ मैं खड़ा नहीं रह सकता, ओ उसने मसाले का अपना सारा बक्सा खाली कर दिया होगा, वहाँ पर उसने इसे खाली कर दिया कि मैं आनंदित हो सकूँ, आप समझे। इस प्रकार फिर कहता हूँ कि मैं मैदान पसंद करता हूँ जहाँ मैं दूर तक देख सकता हूँ। दो भिन्न प्रकार की प्रकृतियाँ, हम दोनों मसीही हैं। परंतु पिता को मालूम था कि तुम यहाँ होंगे और तुम्हारे यहाँ आने के पहले उसने हर चीज तैयार की। आमीन। तुम्हारा पहला आगमन यहाँ पर जब तुम यहाँ आए तो उसने से तैयार कर रखा था। क्या ये बात सोचने में शानदार बात नहीं कि उसने क्या किया। अब परंतु स्मरण रखें कि ये केवल संसारिक वरदान छाया में है। अब हम जानते हैं कि मूसा जंगल में मंदिर बना रहा था या इसे तैयार कर रहा था। उसने कहा उसने सारी चीजें उसी क्रम में बनाई हैं जो उसने स्वर्ग में देखी, समझे। इसलिए संसारिक वस्तुएं जो अनंत चीजें हैं उसका प्रकटीकरण है। और यदि ये पृथ्वी जिस पर आज हम रहते हैं इतनी बड़ी है, जैसा कि हम इससे प्रेम करते हैं और जीना पसंद करते हैं और सांस लेते हैं, फूल देखते हैं, चीजें, यदि ये यहाँ पर है, ये प्रकटीकरण है वो मरते हुए जो केवल अनंत का प्रकटीकरण है। जब आप देखते हैं एक पेड़ संघर्ष कर रहा है, खींच रहा है, जीने का यत्न कर रहा है, इसका अर्थ है कि कहीं एक पेड़ है जिसे ये नहीं करना पड़ता। जब आप मनुष्य को यहाँ देखते हैं जीने के लिए संघर्ष करता है, कोई अस्पताल में या बीमारी के बिस्तर पर या एक दुर्घटना में और मृत्यु उनके गले में घर घर आती है और खींच रही है और रो और जीवन के लिए चिल्ला रहे हैं, इसका क्या अर्थ है। कहीं एक स्थान है, एक देह है जो इसके लिए संघर्ष और चिल्लाती नहीं, देखा, ये नहीं करती। अब ये हमारे लिए अस्थाई वरदान है, ये चीजों को दर्शा रही है। कहीं एक है जहाँ अनंत है, यही यीशु तैयार करने के लिए गया है, उस अनंत को हमारे लिए। अब ये केवल प्रकट करता है इसी प्रकार का, वहाँ महान है क्योंकि ये उसी प्रकार के हैं। अब इसमें रखें, बाइबल ने कहा यदि ये पृथ्वी का हमारा रहने का स्थान यदि ये नष्ट यानी टूटता है, हमारे पास पहले ही एक प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे कि छोटा बालक उसकी छोटी मांसपेशियां माँ के अंदर छटपटा और घूम रही हैं, और परंतु केवल, समझे। और आप देखते हैं, आप एक स्त्री को ले सकते हैं, यदि वो कभी बहुत खराब रही, परंतु जब वो माँ हो जाती है, थोड़ा सा पहले कि वो बालक जन्म ले, वो स्त्री नम्र हो जाती है। उसके आसपास सदा कुछ होता है, वो अधिक नम्र है। क्यों? वह छोटा दूत की आत्मा प्रतीक्षा कर रही है कि उस स्वाभाविक देह को ग्रहण करे। जैसे ही वो जन्म लेता है, जीवन का श्वास उसमें आता है, परमेश्वर उसमें श्वास देता है और ये जीवित प्राणी हो जाता है। अब जैसे ही ये बालक जन्म ले रहा है तो वहाँ आत्मिक देह उसे ग्रहण करने के लिए वहाँ पर है। और अब जब ये देह यहाँ गिरती है इस पृथ्वी में, जैसे कि बालक गिरा, तो वहाँ अमर देह वापस आत्मा को ग्रहण करने के लिए प्रतीक्षा कर रही है फिर से स्वयं में। ओ क्या ही महान बात है, हम अब मसीह यीशु में, आमीन, बालक, मसीह में बालक, परमेश्वर के बालक, पूर्ण छुटकारे की प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने प्रभु यीशु के आगमन पर कि हमें अपने में ग्रहण करता है। जब देह, ये मरणहार देह, ए मरणहारता को ले लेगी, समानता, सारी चीजें जो उसने की, चीजों को प्रकट किया जो आने वाली हैं। जैसे कि देह यहाँ देती है, जैसे कि ये देह उसने रहने के लिए दी, केवल ये प्रकट करने को कि वहाँ एक अब भी एक और महान आने को है, समझे। यदि हम रखते हैं या संसारिक की छवि रखते हैं तो हम स्वर्गीय की छवि भी रखेंगे जो कि अपने में कोई बुराई नहीं रखती, जो कि आने वाली है। अब ये वाली बुराई, बीमारी, मृत्यु, दुख रखती है। मैं अभी अभी प्रकट किया कि अधिक समय नहीं हुआ, इस पर प्रचार किया था परमेश्वर के वचन का रूपांतरण कि कैसे ये देह इसमें बुराई है और ये सारी आधुनिकता सभ्यता जिसमें हम रहते हैं शैतान की है। आप ये विश्वास नहीं करते? बाइबल कहती है ये है, ये संसार, हर सरकार, हम ये विश्वास नहीं करना चाहते, परंतु बाइबल ये स्पष्ट कहती है कि हर सरकार, हर राज्य इस पृथ्वी का शैतान का है और शैतान द्वारा शासित है। शैतान यीशु को ऊपर ले गया और संसार के समस्त राज्य दिखाए जो थे, होंगे और अधिक क्या, और शैतान ने उसका दावा किया और यीशु ने उससे कभी विवाद नहीं किया क्योंकि वो इस संसार का ईश्वर है। समझे, और उसने कहा मैं ये तुझे दे दूंगा यदि तू मुझे गिरकर प्रणाम करे। समझे, वो ये यीशु को बिना बलिदान के देने का यत्न कर रहा था। देखा, ये सौदेबाजी थी, वो उसे बनाने जा रहा था। परंतु संसार ने पाप किया था, इसलिए पाप का दंड मृत्यु था और उसे मरना था। इसी कारण परमेश्वर देह में प्रकट हुआ ताकि मृत्यु को अपने ऊपर ले ले, ताकि दंड भरा जाए। वहाँ से कुछ भी वापस नहीं आता, ये कान छेदना नहीं, ये बिल्कुल मुफ्त में भुगतान किया गया, सारे कर्जे भर दिए गए, अब ये सब उसका है। और हम उसके राज्य के प्रतिनिधि हैं। आज रात्रि यहाँ एक साथ एकत्र हैं हमारा राजा यीशु मसीह के नाम में स्वर्गीय स्थानों में। अब इस संसार में जिसमें हम रहते हैं, ये शिक्षा, मैं आपको ये सिद्ध करना चाहता हूँ, शिक्षा, विज्ञान, सभ्यता और ये सारी चीजें जिसमें लगता है आज हम आनंद करते हैं, शैतान का है और ये नष्ट हो जाएगा। आप कहते हैं भाई ब्रैनम सभ्यता? जी हाँ श्रीमान, ये सभ्यता शैतान के द्वारा आती है। उत्पत्ति 4 ये सिद्ध करता है, केन के पुत्र। देखा, ये सभ्यता आरंभ की, नगर बनाए और बाजे और आदि आदि, और ज्ञान से सभ्यता आई। ज्ञान क्या? वो जो शैतान ने हवा को बेचा अदन की वाटिका में, जिसने उसे जकड़ लिया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कराया। इसलिए एक सभ्यता होगी इस संसार में जिसमें हम जा रहे हैं, परंतु ये इस प्रकार की सभ्यता नहीं होगी। ये सभ्यता जो हमारे पास है, हमें बीमारी, दुख, भोग, मृत्यु, इस सभ्यता में हर चीज गलत है। परंतु उस सभ्यता में ऐसी कोई चीज नहीं होगी, हमें विज्ञान की आवश्यकता नहीं होगी। विज्ञान मूल का बिगाड़ है, जो भी है, समझे। आप अणु तोड़ते हैं, परमाणु तोड़ते हैं और आदि आदि की उड़ा दें। आप बारूद लेते हैं, इसे उड़ा दें, किसी चीज को मार डालें। आप कार लेते हैं और पृथ्वी में से तेल लेते हैं और भूमि में से पदार्थ, ताकि तंतुओं को ढीला कर दें, ताकि ये ध्वस्त हो सके। और सड़क पर 90 मील प्रति घंटा जाते हैं और किसी को मार डालते हैं, समझे। ओ ये कितने अधीर, दबे हुए और जल्दी में हैं। हमें आगे बढ़ना है और ले रहे हैं, और देखिए ये सब शैतान का है। परमेश्वर के राज्य में वाहन, हवाई जहाज या कोई वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं होगी, इसमें बिल्कुल शिक्षा नहीं। इस शिक्षा से ये इतनी बढ़कर होगी कि इसका विचार ही नहीं आएगा, समझे। शिक्षा, सभ्यता और ये सब शैतान से आता है। अब आप कहते हैं कि भाई ब्रैनम तो फिर आप क्यों पढ़ते हैं? देखिए, जैसे कि अब मैं क्यों कपड़े पहनता हूँ, उस आने वाली सभ्यता जो पहले थी, उन्हें किन्हीं कपड़ों की आवश्यकता नहीं थी, वे ढके थे, उनके पास कपड़े पहनने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वे नंगे थे। अब आप पाते हैं कि अब तक कि हम जानते हैं कि हम नंगे हैं, पाप यहाँ रहता है, तब हमें कपड़े पहनने हैं। परंतु आरंभ में ऐसा नहीं था, वहाँ कोई पाप नहीं था, समझे। अब कुल मिलाकर सभ्यता के मार्ग में यही बात है, हम पढ़ते हैं, हम लिखते हैं, हम करते हैं, परंतु इसके साथ कभी समायोजित नहीं होते। इसे कभी भी अपना ईश्वर ना बनाए, क्योंकि ये साम्यवाद का ईश्वर है, समझे। ये यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह विश्वास के द्वारा, ना कि आज आप क्या वैज्ञानिक रीति से सिद्ध कर सकते हैं, परंतु आप क्या विश्वास करते हैं। मैं आपको आज रात्रि वैज्ञानिक रीति से सिद्ध नहीं कर सकता इस भवन में कि एक परमेश्वर है, परंतु फिर भी मैं जानता हूँ कि वो यहाँ पर है, परंतु अपने विश्वास के द्वारा इसे प्रमाणित करता हूँ। अब्राहम आपको वैज्ञानिक रीति से सिद्ध नहीं कर सका कि उस स्त्री से बालक पाने जा रहा है, और वो लगभग 100 वर्षों की, परंतु उसका विश्वास इसकी पुष्टि करता है, समझे। किसी वैज्ञानिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं। क्यों डॉक्टर कहेंगे कि ये बूढ़ा पागल है, यहाँ कह रहा है कि उसे उस स्त्री के द्वारा बालक होने वाला है, वो 100 वर्ष का है और वो 90 की। परंतु आप देखिए, परमेश्वर ने ऐसा कहा, इस प्रकार उसने विज्ञान को नहीं लिया, ये विश्वास को लेता है कि परमेश्वर के वचन का विश्वास करे, ना कि विज्ञान का। इसलिए हमारे विद्यालय और चीजें उड़ गईं, जैसा कि परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि आओ और विद्यालय बनाओ, या यहाँ तक कि बाइबल विद्यालय पाए जाते हैं, आप जानते हैं। उसने कहा वचन प्रचार करो, ये बिल्कुल ठीक बात है। हमारी शिक्षा पद्धति हमें परमेश्वर से दूर ले गई, बजाय कोई और चीज जो मैं जानता हूँ, ये ठीक बात है, परमेश्वर से दूर, ना कि विद्यालय, अस्पताल आदि आदि बनाना, ये संसार के लिए है, उस झुंड के लिए। परंतु उनके विरोध में मेरे पास कुछ नहीं है, वे अपना भाग पूरा करते हैं, परंतु वो अभी ये नहीं है। हम एक अस्पताल बनाते हैं, कभी बहुत अच्छा और अच्छी दवाओं से अभ्यास करते हैं जो हमारे पास हैं, और प्रतिदिन इसमें हजारों मरते हैं, परंतु ओह प्रभु परमेश्वर के राज्य में कोई मृत्यु नहीं, कोई दुख नहीं। आमीन। वहाँ संसार की इन वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु हम इन चीजों को पार कर परमेश्वर की वास्तविकता में आ गए हैं, जहाँ हम विज्ञान से कठिन संघर्ष कर रहे हैं, पाने का यत्न कर रहे हैं, अधिक वैज्ञानिक होते हैं और अधिक मृत्यु को अपने ऊपर लाते हैं। हम हारी हुई लड़ाई को लड़ रहे हैं, इससे खो गया, और विश्वास के द्वारा आज रात्रि विश्वास करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, और उसे स्वीकार करते हैं, वही एक है। विज्ञान आपके लिए क्या तैयार कर रहा है? और अधिक मृत्यु, ये ठीक बात है। कृत्रिम ग्रह और चीजें ऊपर जा रही हैं, ये सारी चीजें कि मृत्यु को फैलाएं, और सारी चीजें इस पृथ्वी पर, इन्हें ना देखें, अपने सिर उससे ऊंचा उठाएं, स्वर्ग की ओर देखें। देखो जहाँ यीशु बैठा है आज रात्रि परमेश्वर के देहनी ओर, हमारे अपराध स्वीकरण पर सदा बिछवाई करने को जीवित। किसका? हम उसके वचन का सत्य होने का विश्वास करते हैं। अब हम पाते हैं ये जीवन सब प्रकार की बुराइयों से भरा है, इसलिए आने वाले जीवन में ये नहीं होगा। इसमें कामुकता और बीमारी मृत्यु है, क्योंकि ये क्या है? ये वो घर नहीं जिसे वो तैयार करने गया है, ये एक बीमारी का घर है। कितने जानते हैं कि बीमारी का घर क्या होता है? निश्चय ही यही जिसमें आप रह रहे हैं, बीमारी का घर, जहाँ सारे बीमार लोग रखे जाते हैं। पाप ने हमारे संग यही किया है, हमें पृथ्वी के बीमारी के घर में रखा, जहाँ आप वे किसी को बीमारी के घर में नहीं आने देंगे, क्योंकि वहाँ सब प्रकार के कीटाणु चारों ओर उड़ रहे हैं, और लोग कीटाणुओं को ले लेंगे और स्वयं को बीमार कर लेंगे, और पाप हमें शैतान के बीमारी के घर में ले आया। ओह परंतु दूसरा वाला कहलाया, मेरे पिता का घर, मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूंगा, इस बीमारी के घर से तुम्हें बाहर निकाल लूंगा और अपने पिता के घर में पहुंचाता हूं। आमीन। आप यही हैं, तुम्हें इस पुराने मिट्टी के बीमारी के घर से निकालता हूं। वो स्थान तैयार करने को गया, एक सिद्ध स्थान, जहां कोई बुराई नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई मृत्यु नहीं। ये सिद्ध स्थान तुम्हें उस सिद्धता के लिए बुला रहा है, और वहां पहुंचने के लिए तुम्हें सिद्ध होना ही है। बाइबल ने ऐसा कहा, यीशु ने कहा, तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ये एक सिद्ध राज्य है, इसलिए सिद्ध लोगों को आना चाहिए, क्योंकि आपको खड़ा होना है और परमेश्वर के सिद्ध पुत्र के साथ विवाह करना है, और तुम्हें सिद्ध दुल्हन होना चाहिए। इसलिए आप ये कैसे किसी चीज के द्वारा कर सकते हैं, सिवाय परमेश्वर के सिद्ध वचन के, जो कि है अलगाव का जल, जो हमें हमारे पापों से धोता है। आमीन। ये ठीक बात है। यीशु मसीह का लहू, इस पर सोचें, टपकता हुआ लहू, लुहान वचन। आमीन। लहू, परमेश्वर का वचन लहू बह रहा है कि दुल्हन को धो दे। आमीन। जी हाँ श्रीमान, वो सिद्ध कुंवारी पवित्र खड़ी होती है, उसने पहले स्थान में कभी पाप नहीं किया। आमीन। वो इसमें फंसाई गई, समझे, वहाँ पिता के घर जो वो तैयार करने को गया है। ये वाला काम भावना के द्वारा आता है, और गिरावट से गिरावट के साथ गिरना चाहिए। कोई मतलब नहीं कि आप पुरानी चीजों को कितना सुधारते हैं, जो भी है वो गिरने जा रही है। उसने कर दिया, क्योंकि वो नष्ट हो गई, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा, वो समाप्त हो गई। परमेश्वर इसे नष्ट करने जा रहा है, उसने ऐसा कहा है, सारी चीजों का जीर्णोद्धार होगा। आप ये विश्वास करते हैं? आरंभ में जब पृथ्वी का जन्म हुआ, जब परमेश्वर ने पहले पानी खींचा पृथ्वी पर से, जैसे कि उसने माँ के गर्भ से पानी लिया, तो वहाँ एक संसार जन्मा था, और जी हाँ, लोगों ने उस पर निवास करना आरंभ किया, जब परमेश्वर ने उन्हें वहाँ उस पर रखा, और फिर उन्होंने पाप करना आरंभ किया, और नूह के दिनों में डूबने के द्वारा इसका बपतिस्मा हुआ, फिर रचयिता के द्वारा इस पर लहू गिराने से पवित्रीकरण हुआ। अब इसी प्रकार से आप आए न्यायोचितता के साथ होते हुए कि परमेश्वर पर विश्वास करें, आपका प्रायश्चित में बपतिस्मा हुआ था, आपके पापों के क्षमा के लिए भी, आपने अपने पापों को परमेश्वर के समक्ष स्वीकार किया, और उसने इसके लिए आपको क्षमा किया, और आपका बपतिस्मा हुआ था ये दर्शाने के लिए कि आप क्षमा हो गए थे, लोगों के सामने स्वीकार कर रहे थे और संसार को दर्शा रहे थे कि आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए मरा, और आप उसने आपका स्थान लिया, और अब आप उसके स्थान पर खड़े हैं, वो आप बन गया ताकि आप वो हो जाएं। तब परमेश्वर की पवित्र करने वाली सामर्थ्य ने आपकी सारी आदतें आप में से साफ कर दी। आप धूम्रपान, पीना और चीजें करते थे जो कि ठीक नहीं थी, झूठ बोलते और सारी बातें। तब यीशु मसीह की पवित्र करने वाली सामर्थ्य आपके जीवन में आई और सारी चीजों को आपसे अलग कर दिया। यदि आपसे कहने में कुछ होता है जो गलत नहीं, तुरंत कहते हैं, एक मिनट रुकिए, क्षमा करें, मेरा इस प्रकार से कहने का अर्थ नहीं था, समझे। शैतान ने वहाँ फंदा लगा रखा है, परंतु आपके ऊपर अनुग्रह है कि लौटकर वापस आएं। यदि आप वास्तविक मसीह हैं, कहते हैं मैं गलत था, हाँ, इसलिए अब अगली चीज जो आप पाते हैं पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा। अब परमेश्वर, ये सहस्र शताब्दी पूरी हो जाती है तब परमेश्वर संसार को आग का बपतिस्मा देने जा रहा है, ये सारे मामले को उड़ाने जा रहा है। आकाश पृथ्वी आग में होंगे, पतरस ने ऐसा कहा है, और चीजों को आग का बपतिस्मा मिलेगा, सारी चीजों का जीर्णोद्धार, और फिर नया आकाश और नई पृथ्वी होगी। यहीं जहां धार्मिकता वास करती है, यहीं जहां हम हैं, हम मरणहार जीव से, हम समय अवधि के जीवों से अनंत जीव हो जाएंगे। जब परमेश्वर का वचन हमारे प्राणों को प्रज्वलित करता है और हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो जाते हैं, उन गुणों के साथ परमेश्वर का जीवांश हम में कि पिता के पुत्र और पुत्रियां स्वर्ग में परमेश्वर चिल्ला रहे हैं, अब्बा पिता, मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरे पिता के घर में। अब ये पुराना संसार गिरना ही चाहिए, क्योंकि ये कामुकता के द्वारा आया और ये अवाज्ञा के द्वारा आया आरंभ में, और हम शरीर के द्वारा जन्मे गिरावट के द्वारा, और इसे उसी मार्ग से वापस होना चाहिए, उसी गिरावट। परंतु एक वो अब आपके लिए तैयार कर रहा है, नहीं गिर सकता क्योंकि वो इसको ऐसा ही बना रहा है। मैं चला गया, क्या हो यदि हमें इसी प्रकार की देह में रहना पड़े? क्या आप आनंदित नहीं होंगे कि मृत्यु जैसी कोई चीज ना होगी? अब क्या ये विचित्र नहीं है? परंतु अब कहते हैं, उदाहरण के लिए, कुछ वर्षों पहले मैं एक छोटा लड़का था और अब मैं अधेड़ आयु का मनुष्य हूँ। मेरे मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, श्री डाउच, और वो कुछ दिनों पहले 93 वर्ष के हैं। अब उनकी ओर देखिए, 40 या 45 वर्षों बाद मैं ऐसा हो जाऊंगा। अब उनमें 45 वर्ष और जोड़ दें, आप कहाँ जाएंगे? मैं आनंदित हूँ कि कुछ ऐसा है जो हमें इस बीमारी के घर से निकाल कर ले जाएगा। वहाँ एक खुला द्वार है और वो मृत्यु कहलाता है। यीशु उस द्वार में खड़ा है, आमीन। वो मेरा नदी के पार मेरी अगुवाई करेगा, वो मुझे उस द्वार से निकाल कर ले जाएगा। वहाँ एक बड़ा द्वार आपके सामने खड़ा है, मृत्यु कहलाता है, और हर बार आपका हृदय धड़कता है, आप एक धड़कन इसके समीप हो जाते हैं, और किसी दिन मुझे उस द्वार पर आना ही है, आपको वहाँ आना ही है। परंतु जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो मैं कायर नहीं होना चाहता, मैं चिल्लाकर पलटकर जाना नहीं चाहता, मैं उस द्वार पर उसकी धार्मिकता के वस्त्र में लिपटा हुआ आना चाहता हूँ, न कि अपनी, उसकी। इसके द्वारा मैं जानता हूँ कि मैं उसे उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जानता हूँ कि जब वो पुकारता है तो मैं मृतकों के मध्य में से बाहर आ जाऊंगा, इस बीमारी के घर से बाहर निकलकर उसके साथ होने को। कहीं भी ये देह गिर सकती है और जहाँ कहीं ये उतर सकती है, जहाँ कहीं मैं किसी दिन बाहर आ जाऊंगा, क्योंकि उसने मुझसे ये प्रतिज्ञा की है और हम इसका विश्वास करते हैं। वो एक बना रहा है जो फिर गिर नहीं सकता। ध्यान दें, आज पृथ्वी पर कैसे एक होने वाली माँ, कैसे माँ की देह विशिष्ट चीजों की लालसा करती है। मैं समझता हूँ और आशा करता हूँ सब व्यक्ति इसे समझेंगे। माँ बालक के जन्म के लिए, यदि उसकी देह में किसी चीज की कमी है, उसे विशेष चीज की इच्छा होने लगती है। देखिए कैसे पिता, मुझे स्मरण है, मैं ऐसे निर्धन परिवार में पला बड़ा और हमारे पास कठिनता से खाने के लिए कुछ नहीं हुआ जब हम बालक थे। आप में से बहुत से इसी प्रकार से दुखी रहे। इस प्रकार कैसे जब बालक के जन्मने के पहले माँ को किसी चीज की इच्छा होती और पिता हर ओर से थोड़ा थोड़ा करके उसके लिए लाता है, समझे? ये उसकी देह, उसके शरीर का कैल्शियम इत्यादि और विटामिन जो उसके शरीर के लिए आवश्यक हैं, जूनी बन रहा है, देखिए, और वो चीजों की लालसा करता है। आने वाले बालक के लिए भोजन और माता पिता यत्न करते हैं पालें, ताकि जब जो बालक जन्मे वो ऐसा बढ़िया प्रसन्न चित्त जहाँ तक संभव हो सके। देखिए कैसे आपके माता पिता ऐसा करेंगे, जब वहाँ किसी चीज की आवश्यकता हो तो माँ इसकी गवाही देती है, उसका तंत्र जो उसमें बना हुआ है, आप समझे? कैसे जब वहाँ किसी चीज की आवश्यकता हो उस आने वाले बालक को, तो माँ उसकी लालसा करने लगती है। अब एक मिनट के लिए रुकें, क्यों हमारे मध्य में बेदारी है? क्यों हम एक साथ एकत्र होते हैं? क्यों मैं सदा लोगों को फटकारता हूँ? क्यों मैं तुम पेंटिकॉस्टल महिलाओं को कहता हूँ पैंट पहनना छोड़ो, श्रृंगार, अपने बाल कटाने, इस प्रकार की चीजें क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि पेंटिकॉस्टल के पुराने चरण में ये नहीं करते थे। वास्तविक बाइबल की विधि ये करने की नहीं है। आप वे छोटे छोटे कपड़े और वस्त्र पहन रहे हैं जो पुरुषों के हैं। क्या आप जानते हैं कि बाइबल कहती है ये परमेश्वर के समक्ष घृणित है? परंतु हम इसकी स्वीकृति देते हैं। क्यों? पवित्र आत्मा चिल्ला रहा है, ये जानता है कि किसी चीज की कमी है। हमें यीशु के पूरे कद में होना चाहिए, हमें परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होना चाहिए, हमें परमेश्वर के पुत्रों के समान व्यवहार करना चाहिए। बहुत पहले एक छोटी कहानी सुनाई गई, मैंने ध्यान दिया एक अश्वेत भाई वहाँ पीछे बैठा था। दक्षिण में वे गुलामों को बेचा करते थे और ये जब उनके पास नीचे गुलाम होते थे, जब गुलामी की मुक्ति की घोषणा से पहले, और वे जाते और उन्हें खरीदते उन लोगों को, जैसे कि पुरानी कारों को दलाल से लेते हैं। उनके पास बेचने का कानून था और उन मनुष्यों को ऐसे बेचते थे जैसे पुरानी कारें। उनके पास बेचने का विधान था। एक बार एक खरीदार दलाल आया और वो इन पेड़ों के आसपास घूमेगा और गुलामों को खरीदेगा, और वो किसी बड़े बाग पर आता है जहाँ उसके पास बहुत सारे गुलाम थे, और वो देखना चाहता था कि उनके पास कितने थे, और वे सब बाहर कार्य कर रहे थे और वे दुखी थे, घर से दूर थे, वे अफ्रीका से थे, वे उन्हें वहाँ से ले आए थे। खरीदार उन्हें खरीदते और गुलामी के लिए बेचते, और इसलिए वे दुखी थे। वे जानते थे कि वे कभी भी फिर घर वापस नहीं जाएंगे और वे यहीं रहेंगे और मर जाएंगे, और बहुत सी बार उन्हें कोड़े पर कोड़े लगाते थे। वे मालिक की संपत्ति थे और वे जो चाहता उसके साथ करता, और वे बस यदि वे उसे मार देते तो मार देते, और यदि वो ये जो भी था उसने ये किया, ये गुलामी है, जैसे इसराइल था और बहुत देश गुलामी में लाए गए, और उन्हें उन निर्धन बेचारे गुलामों को लेना था। उन्होंने सेवा की, वे चिल्ला रहे थे आप जानते हैं कि सारे समय दुख, परंतु उन्होंने एक गुलाम पर ध्यान दिया, युवा, उसका सीना बाहर को निकला हुआ, उसका सर इस प्रकार से ऊपर, उसे कभी भी कोड़ा नहीं मारना पड़ा, कभी भी ये नहीं बताना पड़ा कि क्या करना है। इसलिए वो दलाल बोला, मैं उस गुलाम को खरीदना चाहता हूँ। उसने कहा, वो बिकने के लिए नहीं है। उसने कहा, मैं उसे खरीदना चाहूंगा। उसने कहा, नहीं, वो बिकने के लिए नहीं है। कहा, क्या वो इन सब के ऊपर अधिकारी है? कहा, नहीं। कहा, वो अधिकारी नहीं, वो गुलाम है। उसने कहा, अच्छा, तुम उसे औरों से अलग खाना खिलाते होगे? कहा, नहीं, वे सब वहाँ गलियारे में एक साथ खाते हैं। उसने कहा, उस लड़के में बाकियों से क्या अधिक अंतर है? उसने कहा, यहाँ एक बात है, एक मिनट के लिए मैं भी अचंभित हुआ, परंतु वो लड़का अफ्रीका से विदेशी है, परंतु अफ्रीका में उसका पिता कबीले का राजा है, और यद्यपि वो अपने घर से दूर है, वो एक राजा के पुत्र के समान व्यवहार करता है। वो जानता है कि दूर देश में उसका पिता कबीले का राजा है और वो स्वयं में व्यवहार करता है, क्योंकि वो जानता है कि वो एक राजा का पुत्र है। ओ भाई बहनों, आप और मैं इस संसार में जिसमें हम रहते हैं, हमें अपना व्यवहार परमेश्वर के पुत्र पुत्रियों के समान करें। यहाँ हम परदेशी हैं, परंतु हमारा व्यवहार परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार होना चाहिए कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियाँ हैं। हमारा व्यवहार, हमें व्यवहार और कार्य करना चाहिए, और हर चीज जो परमेश्वर ने व्यवस्था रखी है, और पुरुष के कपड़े स्त्री पहने घृणित है, ये गलत है और पाप में है, इसके लिए कि वो अपने बाल काटे, बाइबल ने ऐसा कहा, उसके लिए प्रार्थना करना भी असाधारण बात है। आप कहते हैं इस विषय में क्या है? मेरे पीछे एक लगा, एक महान जाना माना सेवक, अधिक समय नहीं हुआ, कहा, भाई बहनम, आइए मैं आपके ऊपर हाथ रखना चाहता हूँ। कहा कि आप अपनी सेवकाई को खराब करने जा रहे हैं। मैंने कहा, क्या? कहा, लोगों पर इस प्रकार से चिल्लाते हो? मैंने कहा, मैं बता रहा हूँ। कहा, मैं इसका विश्वास करता हूँ। कहा, मैं भी पेंटिकॉस्टल हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि स्त्रियों को छोटे बाल नहीं रखने चाहिए, पैंट नहीं पहननी चाहिए, और इस प्रकार की ये चीजें वे करती हैं, अपने चेहरों को रंगती हैं। कहा, उन्हें ये नहीं करना चाहिए, परंतु कहा, परमेश्वर ने आपको रोगियों के प्रार्थना करने को बुलाया है। मैंने कहा, उसने मुझे सुसमाचार प्रचार करने को बुलाया है, जी हाँ। और उसने कहा, मैं इसमें विश्वास करता हूँ, परंतु कहा, आप ये सोचते हैं? मैंने कहा, हाँ, देखो तुम्हारे पास क्या है, ये सारे बड़े बड़े कार्यक्रम, टेलीविजन और सारी चीजें, मेरे पास कुछ नहीं है, परंतु परमेश्वर को उत्तर देना है, ये ठीक बात है। मैंने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, परंतु परमेश्वर को उत्तर देना है। उसने कहा, मैं आप अपनी सेवकाई नष्ट करने जा रहे हैं। मैंने कहा, कोई भी सेवकाई जिसे परमेश्वर का वचन नष्ट करेगा, नष्ट नहीं होनी चाहिए, ये ठीक बात है, निश्चय ही ये ठीक है। उसने कहा, भाई तुम इसे नष्ट करने जा रहे हो। मैंने कहा, तो फिर ये कौन बताएगा, समझे? किसी को तो ये कहना है, किसी को तो जो सत्य है उसके लिए खड़ा होना है, कोई मतलब नहीं, क्या आघात पहुँच सकता है। और मित्रों, एक मसीह के समान, जैसे कि लोग विश्वास करते हैं कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं, पवित्र आत्मा स्वयं ही हमें परमेश्वर के वचन में ढालेगा। उसने कहा, आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। कहा, लोग आपको भविष्यवक्ता होने का विश्वास करते हैं। कहा, आपको इन स्त्रियों को सिखाना चाहिए कि कैसे भविष्यवाणी का वरदान पाएं, और इस प्रकार की बातें, और बड़ी ऊंची चीजें बजाय छोटी छोटी बातों के। मैंने कहा, मैं उन्हें बीज गणित कैसे सिखाऊं, जबकि उन्होंने काखा गा भी नहीं सीखा। जब वो साधारण चीजें भी नहीं करेंगे, स्वाभाविक बातें, तो आप कैसे उन्हें ऊंची ऊंची बातें बताने जा रहे हैं? जब आप यहाँ से भी आरंभ ना करेंगे, बिना पहले पायदान पर चढ़े, आप सीढ़ी के सबसे ऊपर के पायदान पर कैसे चढ़ेंगे? यही कारण है कि आप गिरते हैं, समझे? परंतु नीचे आओ और फिर से परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, सीधे ऊपर जाएं, जीवन को संवारें और परमेश्वर के वचन के प्रत्येक बिंदु को, जिसे करने को परमेश्वर ने आपको ठहराया है कि आप करें। अब सोचे कैसे परमेश्वर हमें भला व्यवहार करना चाहिए और मसीह के समान व्यवहार, हमारा आचरण मसीह के समान होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ परदेशी हैं, ये हमारा घर नहीं, नहीं हमें बस यहाँ रखा गया है अस्थाई, हमें जाना ही है, हमें से प्रत्येक को आज रात्रि। अब सोचते हैं यदि परमेश्वर अपने अनुग्रह में माँ है कि ये छोटा बालक जन्म ले, ये किसी विटामिन की लालसा करती है और माँ के वचन बोले जाते हैं, पिता मैं खरबूजा या तरबूज चाहता हूँ, मैं कुछ चाहता हूँ, ये या वो और ये, क्यों? वो हर चीज करेगा, वो जो कर सकता है, क्यों से लाए? क्योंकि वो जानता है, वो चाहता है कि उसका बालक उतना अच्छा जितना हो सकता है जन्मे, समझे? और वो सब कुछ करेगा जो करने योग्य है कि उसे लाए, वो कितना योग्य है वो इसे लाए, वो रचयिता है। अब सोचे वो कितना योग्य है कि हमारे लिए देह तैयार करे कि उसकी अपनी सी महिमा में देह में रहें। यदि हम रहना चाहते हैं, हम में कुछ है जो जीने के लिए पुकारता है और कुछ हम में है कि हमें सही करने के लिए पुकारता है, तब परमेश्वर आपको किसी को मंच पर बुलाएगा या प्रचार मंच पर जो परम सत्य को प्रचारेगा, क्यों? समझे? ये आपको दर्शाता है, तब यदि आप वास्तविक बालक परमेश्वर के हैं तो आप चिल्लाएंगे, परमेश्वर इसे मुझसे ले ले, इससे मेरा खतना कर दे, मुझ में से ये बातें निकाल दे, क्यों? स्वर्गीय घर के लिए आपको इसकी आवश्यकता है, जहां आप जा रहे हैं, जहां वो तैयार करने को गया है, आपको मसीह की वास्तविक वचन दुल्हन होना है। मैं कुछ यात्रियों पहले बलिदान पर प्रचार कर रहा था, छुटकारे के दिन में मैं प्रचार कर रहा था, केवल एक स्थान जो परमेश्वर ने, केवल एक कलीसिया जहां परमेश्वर मनुष्य से मिलता है, और वो जिसमें उसने कहा, वो स्थान जहां उसने अपना नाम रखा है, उसने कहा मैं उनसे किसी और स्थान में नहीं मिलूंगा सिवाय उस स्थान के वो द्वार जिस पर मैंने अपना नाम लिखा है। अब वो आपसे मेथोडिस्ट द्वार, बैप्टिस्ट द्वार, पेंटिकोसल द्वार या उनमें से कोई, परंतु उसने अपना नाम अपने पुत्र में रखा है। उसने कहा मैं अपने पिता के नाम में आया हूँ। कोई भी मनुष्य आता है और कोई भी बालक अपने पिता के नाम में आता है, वो मैं ब्रणम के नाम में आया हूँ क्योंकि मेरा पिता ब्रणम था, और आप अपने नाम में आते हैं क्योंकि ये आपके पिता का नाम है। और यीशु पुत्र अपने पिता के नाम में आया और उसने कहा वो उसका नाम रखता है इस द्वार पर जिस पर मैंने अपना नाम रखा है। ये बलिदान था और यीशु मसीह में केवल स्थान है, वहीं जहां आप संगति पाएंगे और परमेश्वर की आराधना करते हैं। आप कहते हैं भाई मैं इस कलीसिया से हूं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, आपको मसीह में होना है। एक विशेष नामधारी सेवक ने उस रात्रि मुझसे कहा श्री ब्रणम इधर देखिए, यीशु ने कहा जो कोई भी विश्वास करता है, बाइबल ने कहा जो कोई भी विश्वास करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर के आत्मा से उत्पन्न हुआ। मैंने कहा क्या बाइबल ऐसा भी नहीं कहती कि कोई मनुष्य बिना पवित्र आत्मा के यीशु को मसीह नहीं कह सकता? समझे, आप बाइबल को झूठा नहीं कर सकते, इसे ठीक सही से बैठाना है। इसलिए आप पूर्णतः नया जन्म प्राप्त किए हुए हो गए पवित्र आत्मा के आपके अंदर, जो आपके द्वारा बाहर गवाही देता है आप जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र है। और यदि आप हैं और एक भाग हैं, यदि आप परमेश्वर के बालक हैं परमेश्वर के वचनों में, तो आप वचन का कैसे इनकार कर सकते हैं? तो कैसे पवित्र आत्मा आपसे मत्सार का विश्वास करवा सकता है कि आपको कुछ इस प्रकार से करना है जबकि बाइबल ने कुछ और कहा, हमें कलीसिया का सदस्य होना है और ये और वो करना है, जबकि बाइबल स्पष्ट रूप में बताती है कि आपको क्या करना है, समझे? और तब जब आप देखते हैं आप इसमें कूद पड़ते हैं, तब आप उसके साथ हो जाते हैं, ठीक ऊपर की ओर बढ़ते जाएं और बढ़ें, जैसे एक जीवांश स्त्री के गर्भ में अंडे के साथ आता है और तब वो छोटा अंडा बढ़ने लगता है और जीवांश लाने लगता है। वो एक मानव जीवांश को और एक कुत्ते के जीवांश को और एक गाय के जीवांश को नहीं रखता, ये सारा का सारा मनुष्य के जीवांश को रखता है। और जब परमेश्वर का बालक, जब वो ठहराया हुआ है, प्रयोग करने में ये बुरा शब्द है, परंतु ये परमेश्वर का है, यहाँ परमेश्वर की बाइबल है, परमेश्वर का पूर्व ज्ञान पहले से ठहरा सकता है और अपनी शान में हर चीज से कार्य करवा सकता है। जब वो ठहराए हुआ बीज जो आपको होना था और परमेश्वर ने आपको बुलाया और बीज का वो छोटा उकाब परमेश्वर का वचन सुनता है, ये चोटी पर बनेगा, एक वचन से दूसरे के ऊपर होगा, दूसरे के ऊपर, दूसरे के ऊपर, दूसरा वाला, ये किसी मत्सार में नहीं मिलेगा। ध्यान दें, इन फाटकों में हर दिन उनको नई शुद्ध रोटी खानी चाहिए और वहाँ उनके मध्य में कोई खमीर नहीं मिलेगा सातों दिनों में, क्या ये ठीक है? सात कलीसिया काल, तब कोई खमीर नहीं, मत्सार नहीं, नहीं कुछ नहीं मिलाया, इसे बिल्कुल ही अखमीरी रोटी होना है, कोई खमीर बिल्कुल तुम्हारे मध्य में ना मिले, जरा भी खमीर, वचन स्वयं केवल यही है और वचन परमेश्वर है और परमेश्वर देह बना व्यक्ति यीशु मसीह में जो कि द्वार है। वहाँ द्वार पर मैं आपसे मिलता हूँ कि आराधना करूँ जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। इसलिए यदि इस रात्रि आप आकर कहते हैं मैं यीशु मसीह को अपना जीवन देता हूँ और आपने कभी भी पवित्र आत्मा नहीं पाया, इसमें आ जाएं। आपको ये करना चाहिए, आपको इसमें बढ़ना चाहिए। परमेश्वर से कहें कि वचन के ऊपर वचन को रखें। इस प्रकार से जब तक आप परमेश्वर के पुत्र के पूरे कद में ना हो जाएं, या एक परमेश्वर की पुत्री संसार की चीजें सोचते हैं। पहला यूहन्ना कहता है यदि आप संसार या उसकी चीजों से प्रेम करते हैं, ये इसलिए कि आप में परमेश्वर का प्रेम है ही नहीं, आप बहकाए हुए हैं। आप में संसार का प्रेम है और इसने आपको धोखा दिया। शैतान ने चीजों का ढेर दिखाया और समझे आप नहीं कर सकते, तब आप बाइबल में से परमेश्वर का एक भी वचन नहीं निकाल सकते। पहले पाप का क्या कारण था? न कि बहुत बड़े झूठ के द्वारा, परंतु क्योंकि हवा ने गलत अर्थ लगाया, शैतान ने किया एक वचन ने जंजीर तोड़ दी और एक वचन लेने को मना किया। यह बाइबल का आरंभ था। यीशु बाइबल के मध्य में आया, उसने कहा मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहेगा परंतु हर वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। परमेश्वर का समस्त वचन यही है। क्या आप विश्वास करते हैं कि ये उसका प्रकाशन है, परमेश्वर का सारा वचन? तब प्रकाशित वाक्य 22 में यीशु यूहन्ना के पास पत्मोस टापू पर आया और यीशु ने अपने दूत को इन बातों की गवाही देने के लिए भेजा। समझे, जो कोई भी इसमें से एक भी वचन निकालेगा या एक वचन इसमें मिलाएगा, मैं उसका भाग जीवन की पुस्तक में से निकाल दूंगा। बस ये ना कहें अच्छा मैं परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, ये ठीक है, फिर बाकी में मिला दें। आप कहते हैं मैं न्यायोचित ठहरा हूँ, मैं सेवक का साथ देता हूँ, मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, तो फिर आपको फिर से जन्म लेना है, आपको पवित्र आत्मा से भर जाना चाहिए। समझे, बस इसमें मिलाते रहें और जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के कद में बढ़ रहे हैं। ओ परमेश्वर योग्य है कि हमें तैयार करे और हमारे जीवन में लालसा उत्पन्न करे कि हम कुछ देखना चाहते हैं। कितनी यहाँ है जो परमेश्वर को और अधिक चाहते हैं? क्यों? ये दिखाने जा रहा है कि आपके लिए और है। समझे, आप इसकी लालसा कर रहे हैं, आपको छोटी प्रसव पीड़ा हो रही है, आपको और आवश्यकता है ताकि हम आनंदित और स्वतंत्र और सिद्ध हो सकें। हमें होना है जैसे कि जीवन का छोटा जीवांश है परमेश्वर की छाती में, जैसे कि जीवन का जीवांश माँ की छाती में। परमेश्वर बढ़ रहा है और जा रहा है, गया हमारे लिए स्थान तैयार करने को, अनंत स्थान अपने आप के साथ, ना कि वो स्थान जहाँ बीमारी का घर एक मर रहा है, पाप व्यभिचार और यहाँ संसार की गंदगी। यदि आपका मस्तिष्क उस पर है तो ये दर्शाता है कि ये कभी भी परमेश्वर के संपर्क में नहीं आया। समझे, आपको तैयार किया है, आपका मस्तिष्क भ्रम है, आपने बस कलीसिया की सदस्यता ली और कहते हैं भाई मैं इससे संबंधित हूँ, मेरी माँ इससे है, या आपकी माता के दिनों में ठीक हो सकता है, परंतु हम दूसरे दिन में रह रहे हैं। वैसरी का संदेश कभी नहीं करेगा, वो लूथर को नहीं ले सका। लूथर ने न्यायोचितता में विश्वास किया परंतु वैसरी के पास पवित्रीकरण था। पेंतिकोस्त लाए, वे न्यायोचितता और पवित्रीकरण को न ले सके। ये वरदानों के वापसी का समय था, अब हम उससे जा रहे हैं। समझे, तीन अवस्थाओं से दाखलता आ रही है। पहली, ये छोटा लंबी पत्ती लूथर आया सुधार से, ठीक है, वो स्कंद था। प्रकृति पर ध्यान दें, परमेश्वर और प्रकृति निरंतरता में कार्य करते हैं क्योंकि परमेश्वर प्रकृति में है। समझे, अब अगला आता है खुंदना परागण मैद्रोडिस युग, तब पेंतेकोस्त लाता है, वो बिल्कुल सिद्ध जैसे कि गेहूं का बीज दिखाई पड़ता है। ये सिद्ध गेहूं है, गेहूं का बीज, इसे खोले वहाँ कोई गेहूं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भूसा है इसको ले जाने वाला, परंतु जीवन इसमें से होते हुए कार्य कर रहा है। समझे, उन्होंने लूथर के युग में लूथर को स्वीकार किया, वो जीवन निकल कर आया परंतु जाकर ये नामधारी हो गया। पहली चीज आप जानते हैं, नामधारी हो गए जिसका अंत जलाया जाना है। देखा, तना सूख गया, ये बस ले जाने वाला है। उनमें से कुछ अब भी उस पुराने तने पे टिके रहना चाहते हैं, परमेश्वर के विषय में कुछ नहीं जानते, मर गए। वे कहते हैं भाई देखो हम पत्ती हैं, हम लूथर थे, ये ठीक बात है, परंतु देखिए अब ये कहा, समझे, हम मेथोडिस्ट थे और फिर भी हम पेंतिकोस्तल थे, परंतु पेंतिकोस्तल को देखें कैसे ठंडे और औपचारिक हो गए हैं, कैसे हर कोई दूर जा रहा है। समझे, ये क्या है, ये वास्तविक बीज को ले जाने वाले थे, समझे, और ये दूसरे सारे ले जाने वाले थे, परंतु नामधारी गए। यदि आप कहते हैं मैं पेंतिकोस्तल हूँ तो परमेश्वर के लिए कुछ अधिक नहीं। यदि आप कहें कि आप रोमन कैथोलिक हैं या एक यहूदी या आप जो भी हो सकते हैं, ये आपको जन्म लेना ही है, वो जीवन जो उसे ले जाने वाले के द्वारा आता है। तने पर मत रुकिए, बीज में मत रुकिए, सीधे उस सिद्ध भाग पर जाएं। अब स्मरण रखें और हर सुधार जो हमारे पास था उन लूथरन आदि आदि तीन वर्षों में वे संगठित हो गए। ये ठीक बात है, हर बेदारी तीन वर्षों में संगठन को लाई। सोचते हैं ये कितने समय से चल रहा है, 20 या कुछ वर्षों से, और कोई संगठन नहीं। क्यों? ये बीज आ रहा है, भूसे की अधीनता में बन रहा है, इस प्रकार से बाहर पड़ा है। अब इसे पुत्र की उपस्थिति में रहना है कि महिमा वाले बीज में पके, जैसे कि वो एक पहले में था। वास्तविक कलीसिया जो नीचे चली गई, पहली वाली, वो फिर तने में से होती हुई वापस आ रही है। दूसरी कलीसिया जब जुड़कर इसे उठाने आती है, वो जीवन जो लूथर में गया, जीवन जो मेथोडिस्ट में गया, वो जीवन जो पेंटिकॉस्टल में गया, वो बीज में आएगा। ये सीधा बीज में जाएगा और बाहर जाएगा, यीशु मसीह को की सिद्ध देह को बना रहा है। जैसे कि सूर्य ऊपर आता है प्रातः को, आप कोई भी प्रकृति ऐसी नहीं देख सकते कि वो परमेश्वर की गवाही नहीं देती। आपको यहाँ तक कि बाइबल की भी आवश्यकता नहीं कि जाने की एक परमेश्वर है। छोटा सूर्य जन्मता है, एक निर्बल बालक, लगभग 7 बजे विद्यालय के लिए निकलता है, 10 या 11 बजे से ये बाहर होता है, 12 बजे ये अपनी सामर्थ्य में होता है, दोपहर बाद 3 बजे ये बूढ़ा होने लगता है, 7 या 8, 6, 5 या 6 बजे दोपहर बाद इसके कंधे झुकने लगते हैं, ये मर जाता है। क्या ये इसका अंत होता है? नहीं, अगली प्रातः है ये फिर जीवित होता है। जीवन, मृत्यु, गाड़ा जाना, जी उठना। पत्तियों को देखिए जो पेड़ों पर आती हैं, ये आती हैं, एक अच्छी बढ़िया पत्ती छाया को लाती है, अपना फल लाती है, अगला। पहली बात आप जानते हैं कि शरद ऋतु आती है, इस पर प्रहार होता है मृत्यु का, सीधी जड़ में चली जाती है और फिर से भूमि में। क्या ये इसका अंत है? अगले वसंत में ये फिर से गवाही देने वापस आती है। ओ, ये निरंतर जीवन है। परंतु भाई बहनों, हमारे पास अनंत जीवन है, हमारे पास अनंत जीवन है इस महानतम वाले में होते हुए जो आया, चला गया और हमारे लिए देह तैयार करने योग्य है। और ये बढ़ता हुआ दर्द हम अनुभव करते हैं, जैसे आप महिलाएं दोषी अनुभव किया जो आप करती हैं, और आप मनुष्यों ने, ये धर्म विद्यालय की शिक्षा है और आदि आदि, आप सब ये कहना चाहते हैं, मुझे ये मत्सार याद है, मैं ये करता हूँ, परंतु आपके अंदर कुछ है, आप अंधे हैं कि आँख खुली हुई देखते हैं, बहरा, अंधा, इन सारी चीजों की प्रतिज्ञा की गई है, वचन को अपनी सामर्थ्य में प्रचार होते हुए देखते हैं। देखिए, एक व्यभिचारिणी मार्ग से अलग एक महिला बन गई। देखिए, एक पियक्कड़ आता है और परमेश्वर का वास्तविक संत हो जाता है। ओ, देखा, कुछ है इसमें, जीवन है, और आप अनुभव करना आरंभ कर देते हैं। ठीक है, हो सकता है मुझे ये नहीं करना चाहिए, परंतु देखिए ये क्या है, ये कुछ है, आपकी देह को आवश्यक भूख है, और आते हैं, परंतु परमेश्वर के पास यहाँ विटामिन है उस देह के हर कण के लिए। यीशु परमेश्वर की छाती में स्थान तैयार करने को गया। जी हाँ श्रीमान, एक छोटा जीवांश, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का छोटा पुत्र या पुत्री। यीशु ने अपने पिता से प्रार्थना में केवल एक चीज मांगी, आप जानते हैं वो क्या था? एक चीज, अपने सारे बलिदान के पश्चात जो उसने यहाँ पृथ्वी पर किए, वो जीवन जो वो जिया, वो मार्ग जिस पर वो चला, उसने केवल एक ही चीज मांगी कि जहाँ मैं हूँ ये भी हूँ। उसने हमारी संगति मांगी, केवल यही बात उसने अपने पिता से प्रार्थना में मांगी, सदा के लिए आपका साथ। यदि आप इसे संत यूहन्ना 17 में पढ़ना चाहते हैं और 24वां पद, तब फिर हमें उसकी कितनी अभिलाषा करनी चाहिए, यदि उसकी इच्छा है। अब सुनिए, यदि आप वास्तव में परमेश्वर के आत्मा से जन्मे हैं, इसका अर्थ सारी बातें आपके लिए हैं, समझे? ये नियमों की पुस्तक नहीं है, आप किसी भी नियम आदि से नहीं जीते, आप परमेश्वर के अनुग्रह से जीते हैं, परमेश्वर के आत्मा से। मैंने अक्सर एक मिशनरी के समान ये कहा, मैं समुद्र पार जाऊंगा, क्या हो यदि मैं अपनी पत्नी, अपने बालकों को भीतर लाऊं और कहूं, अब इधर देखो बालको, श्रीमती ब्रैनम इधर सुनिए, मैं तुम्हारा पति हूं, जबकि मैं यहाँ नहीं हूँ, तुम्हारा कोई और पति ना हो, जबकि मैं गया हूँ, यदि तुम ये करती हो तो वापस घर आने पर तुम्हारी खाल उतार दूंगा, वो समझे? अपना पैर पटक कर बाल को सुनो जो मैं कहता हूँ, हाँ हाँ पापा हाँ, तुम्हारी एक भी गलती ना सुन लूँ, समझे? अब ये वो घर नहीं होगा, क्या हो यदि वो कहे, अब तुम श्रीमान, अब मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, श्रीमान ब्रैनम, मैं तुम्हारी कानूनी ब्याहता पत्नी हूँ, तुम्हारी कोई दूसरी मित्र लड़की ना हो जब तुम बाहर हो, नहीं तो अब ये कोई घर ना होगा, अब ये कुछ और होगा, हम ये नहीं करते, मैं उससे प्रेम करता हूँ, वो मुझसे प्रेम करती है, जब वो जानती है कि मैं जा रहा हूँ, वो जानती है मैं नहीं जाता जब तक प्रभु मुझे जाने को ना कहे, हम फर्श पर आ जाते हैं और बालक चारों ओर, हम प्रार्थना करते हैं। मैंने कहा, प्रिय परमेश्वर, मेरे छोटे साथियों, मेरे बालकों की रक्षा करें, वे कहते हैं परमेश्वर पिताजी आपकी रक्षा करें, जब हम जाएं, जबकि वो गए हुए हैं, और जब हम जाएं, अब क्या हो यदि मैंने वहाँ कुछ गलत कर दिया, क्या हो यदि मैंने अपराध या कुछ गलती कर दी, और मैं वापस आता हूँ और अपनी बेचारी पत्नी के पास गया, वहाँ खड़ा हुआ और उसके झुर्री वाले चेहरे को देखा, उसके बाल सफेद हो रहे हैं, मैंने जाकर कहा, प्रिय मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तुम जानती हो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। निश्चय ही बिल, मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्रेम करते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने क्या किया। मैं किसी लड़की को घर ले गया। मैं कहता हूँ क्या तुम मुझे इसके लिए क्षमा करोगी? मैं विश्वास करता हूँ वो कर देगी। मैं वास्तव में विश्वास करता हूँ, परंतु क्या मैं वास्तव में ये करूंगा? जब मैं वहाँ खड़े हुए देखता हूँ उन बालों को जो सफेद हो रहे हैं, मैं जानता हूँ वो मेरे लोगों के मध्य में खड़ी है और मैं जानता हूँ वो कैसी वास्तविक पत्नी रही है। क्या मैं ये कर सकता हूँ? उसे आघात पहुंचाने से तो बल्कि मैं मर जाऊं मैं चाहूंगा। और ये शारीरिक प्रेम में अपनी पत्नी से, तो मेरा अगपा प्रेम यानी ईश्वरीय प्रेम कितना बड़ा होगा? मैं उसे आघात पहुंचाने को कुछ नहीं करूंगा, निश्चय ही नहीं। मैं उससे प्रेम करता हूं। मैं वो हर चीज करना चाहता हूं जो वो मुझसे चाहता है कि करूं। मैं उसके हर वचन के साथ जो उसने कहा मिला रहना चाहता हूं। संसार क्या कहता है कोई मतलब नहीं, वे इसका विश्वास नहीं करेंगे जो भी हो। मैं जानना चाहता हूं कि उसने मेरे करने के लिए क्या कहा है, और यदि मुझमें कुछ घटी है मैं चाहता हूं कि वो मुझे उसे प्रदान करे और उसके लिए मैं जीऊं और स्वयं को संसार से अलग रखूं। ये पुरानी संसारिक देह में, मैं आपको बताऊं, ये संसारिक देह जिसके लिए आप बहुत सोचते हैं कि जिसे आप हॉलीवुड के नमूने पर हों, आप इसके इतने समीप हैं कि ये वहाँ अधिक नहीं रहेगी। आप स्मरण रखें, आपने जो प्रभु ने मुझे दी वो भविष्यवाणी सुनी है, ये हो रहा है। जी हाँ श्रीमान, ध्यान दें, ये होगा। आप बस देखते रहें। उसने अभी तक मुझे कुछ भी नहीं गलत बताया। मैं ये किसी के पास भी ले जाऊंगा जो कहना चाहता है। मैं नहीं जानता कब और कहां, परंतु उसने ये किया है, उस पर न्याय है। इसके लिए कोई छुटकारा नहीं, ये निकल गया, समझे? अब ध्यान दें, उसके लिए जीना, स्वयं को संसार से अलग रखना। अब देखिए, आप टेलीविजन पर देखते हैं, आप में से कुछ बहनें और आप यहाँ जाते हैं और आप चाहते हैं कि आप युवा महिलाएं, आप युवा हैं, मैं जानता हूँ, परंतु आप मसीही हैं, समझे? आप भिन्न हैं। आप संसार के समान नहीं होना चाहती, आप संसार से प्रेम करती हैं। ये केवल आप ही युवा नहीं, आप में से कुछ अधिक आयु वाले भी। अच्छा, ये क्या करता है, समझे? आप टेलीविजन देखते हैं, आप उन बड़ी बड़ी दुकानों में जाते हैं, आप उन छोटे छोटे कपड़ों को देखते हैं जो स्त्रियां पहनती हैं, ये अभक्ति है। क्या आप जानते हैं कि न्याय के दिन क्या होने जा रहा है? आप अपने पति के लिए गुणों से संपन्न हो सकती हैं, परंतु न्याय के दिन आपको व्यभिचार के लिए उत्तर देना होगा। यीशु ने कहा, जो कोई भी स्त्री को कुदृष्टि से देखे तो वो उससे अपने हृदय में व्यभिचार कर चुका। किसको दोषी ठहराएं? आपको, समझे? आपने स्वयं को उपस्थित किया उन छोटे छोटे कपड़ों और तंग चिपके पजामों से। कुछ स्त्रियों ने मुझसे कहा, अधिक समय नहीं बीता, कहा, भाई बहनम, मैं छोटे कपड़े नहीं पहनती, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, मैं तंग चिपका पजामा पहनती हूँ। मैंने कहा, ये और भी खराब है, और खराब है, ये ठीक बात है। आप महिला के लिए सही वस्त्र नहीं खरीद सकते, उसने कहा। एक स्त्री ने कहा, भाई आपने सच कहा है, आप नहीं सकते, आप इसे नहीं खरीद सकते, परंतु वे अब भी सामान बेचते हैं, सिलाई मशीनें, समझे? इसके लिए कोई बहाना नहीं है, बिल्कुल नहीं, समझे? बहन, ये दर्शाने जा रहा है, मैं आपका भाई हूँ, मैं मसीह का दास हूँ, जो मैं आज रात्रि कहता हूँ मुझे न्याय में इसका उत्तर देना है, समझे? आपको खड़ा होना है व्यभिचार के दोषी, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय से निकल गया। आप अब भी कलीसिया में जाते हैं, आप अब भी आत्मा में नाच सकते हैं, आप अब भी भाषाओं में बोल सकते हैं, और ये चीजें अच्छी हैं, परंतु ये अब भी नहीं है श्रीमान, नहीं। स्मरण रखें, बाइबल ने कहा, अंत के दिनों में झूठे मसीह आएंगे, झूठे यीशु नहीं, वे इसके लिए शांत नहीं रहेंगे, परंतु झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे अभिषिक्त, वे पूरी रीति से पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होते हैं और फिर भी गलत, समझे? वहाँ दो हैं, आप में से तीन लोग हैं, बाहरी देह, आपके पांच इंद्रियां हैं, उनसे आप पृथ्वी की चीजों से संपर्क करते हैं, अंदर आत्मा, वहाँ पांच इंद्रियां हैं, प्रेम, विवेक और आदि आदि, जिससे आप संपर्क करते हैं, परंतु इसके भीतर में प्राण है। स्मरण रखें, वर्षा धर्मी और अधर्मी दोनों पर बरसती है, वही वर्षा गेहूं के दाने को बढ़ाती है और धतूरे को भी बढ़ाती है, समझे? ये क्या है? बीज के भीतर उसका स्वभाव है, और स्वभाव दर्शाता है, स्वयं को दर्शाता है। ये एक खेत में हो सकते हैं, ठीक झाड़ियों के संग, झाड़ी और गेहूं एक साथ जितना हो सकता है आनंद करते हैं। इसका सर झुका है, ये पीने के लिए प्यासा है। जब वर्षा आती है तो धतूरा भी वैसे ही चिल्ला सकता है जैसे गेहूं चिल्ला सकता है, परंतु उनके फलों के द्वारा आप उन्हें जान जाएंगे, समझे? मसीहो, हो सकता है मैं आपको फिर ना देखूं, वर्षों से मैं यहाँ पर हूँ, संभव है आपको फिर कभी ना देखूं। परमेश्वर के वचन के साथ हो जाएं, दर्पण में देखें। एक बार एक छोटे लड़के के समान जो गांव से बाहर गया, उसने कभी भी दर्पण नहीं देखा था। वो अपनी मौसी के घर आया, वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगा, उसने दर्पण देखा और उसे दर्पण में छोटा लड़का दिखा। वो देखता हुआ ऊपर चढ़ने लगा और वो हाथ हिलाता तो वो लड़का भी हाथ हिलाएगा और वो देखता रहा। इसलिए जब वो उसके साथ बहुत पास आ गया, वो घूमा, क्यों? माँ, ये मैं हूँ? आप परमेश्वर के दर्पण में कैसे दिखते हैं? क्या ये परमेश्वर के पुत्र या पुत्री को परिवर्तित करता है? क्या वहाँ कुछ है जो आप सुनते हैं? क्या आप उस व्यक्ति से घृणा करते हैं जो ये कह रहा है, या क्या कुछ है जो खींचता है, कहता है मैं जानता हूँ कि वो व्यक्ति ठीक है क्योंकि ये पवित्र वचन में है? तो फिर ये विटामिन की इस देह को आवश्यकता है जो कि अभिषेक के लिए है, एक घर दूसरा जिसकी आवश्यकता पड़ने वाली है जब आप वहाँ पहुँचते हैं, समझे? ये घर यदि हम मिट्टी वाले में जन्मे हैं। अब स्मरण रखें, हम इस देह के विषय में बहुत सोचते हैं, हम इस पर बहुत कपड़े पहनते हैं, हम बहुत सी चीजें करते हैं बेमतलब में, एक के बाद दूसरा बदलते हैं और ये सारी चीजें, और ओ ये हर एक कोई किसी को कोई चीज आरंभ करने दो। आप अपनी सीढ़ी लाल रंग लें और देखिए जॉन भी अपनी लाल रंग लेंगे। आप शेवलर को बदलकर फोड़ ले लें और वे रुक नहीं सकते। ये प्रतियोगिता का समय है। किसी विशेष प्रकार की टोपी पहने, देखना सारी स्त्रियां ले आती हैं, विशेषकर पास्टर की पत्नी। जरा देखें, ध्यान से दें, ध्यान से देखें क्या होता है। अब ये सत्य है, नितान सत्य है। ये प्रतियोगिता का समय है भाई, ये प्रतियोगिता का समय है, होना ही है। और ये सब चीजें एक उद्देश्य के लिए हैं। मैं चिंता नहीं करता कि मेरा कोट मेरी पैंट से मिलान नहीं करता और मेरा कठिन समय रहा, मेरी पत्नी या मेरी बहू कोई मुझे बताए इसके साथ कौन सी टाई पहननी है। मैं चिंता नहीं करता कि ये मिलान में बैठते हैं या नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरा अनुभव परमेश्वर के वचन से मिलान खाए। यही बात है, क्योंकि यहाँ जहाँ मेरे रहने का उद्देश्य है, न कि वहाँ सामने कोने में जॉनसन के साथ, परंतु वहाँ महिमा में जहाँ यीशु गया हुआ है कि हमारे लिए स्थान तैयार करें। हाँ, हम वहाँ चाहते हैं। जी हाँ श्रीमान, इस सबसे अलग ये पुराना मिट्टी का घर, यहाँ आप जानते हैं कि ये क्या है। ये देह एक पुराने कोट के समान है जो आप पहनते हैं, एक कोट जो आपने एक बार पहना, परंतु अब आपके पास एक है जो अधिक अच्छा है। आप इसे अब और प्रयोग नहीं करते। आप क्या करते हैं? आप इसे अलमारी में टांग देते हैं क्योंकि आपके पास इससे और अच्छा है, ये और अधिक परिपूर्ण और उससे जो आप पहना करते थे ये फट गया। क्या ये वो वस्त्र है जहां आप उसके अंदर हैं? वस्त्र केवल क्या करता है? ये आपकी छवि रखता है, समझे? अब आपको इसकी और अधिक आवश्यकता नहीं, आपने इसे टांग दिया है, ये चिथड़ा है। और इसी प्रकार से ये पुरानी देह है, आप ये स्वर्गीय की छवि पर है, फिर भी आप ये नहीं हैं। आप इस देह के भीतर हैं, आप परमेश्वर का आत्मा इस देह के भीतर हैं। यही जो बाहर वाले को अपनी अधीनता में रखता है, क्योंकि भीतर वाला इसे खींच रहा है। देखिए, इसे परमेश्वर के वचन के समायोजन में ला रहा है, आपका भीतरी, आप स्वयं में, आपका जीव। ये देह बस एक पुराना कोट है और किसी दिन आप इसका क्या करेंगे? आपके लिए ये बस कुछ समय के लिए है, एक वस्त्र था, ये पृथ्वी का सा वस्त्र है। ये देह आपकी वास्तविक देह, आपका वास्तविक स्वयं इस पुराने कोट के अंदर है, जिसे आप विलियम बर्नम कहेंगे या सूजी जॉन्स या जो भी है, आप समझे। किसी दिन ये संसार के आपकी स्मृति के भवन में टंगा होगा। आप इसे वहाँ बाहर कब्र में रख देंगे और कोई इस पर कब्र का पत्थर रख देगा, यहाँ आदरणीय अमुक अमुक या जॉन आदि 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 रखे हैं, यहाँ ये आपकी यादगार के लिए रखा है। लोगों ने आपको इसमें देखा और आप क्या थे, आपका वास्तविक आप स्वयं इसके अंदर था, परंतु पुराना कोट स्वयं स्वर्गीय की छवि रखता है। ओ लोगो, क्या आपने कोट को बदलने का आरक्षण करवा लिया है? क्या आपने स्वर्ग में आरक्षण करवा लिया है? स्मरण रहे, आपके पास आरक्षण होना ही है, इसके बिना आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। मैं आपसे आधुनिक भाषा में बात कर रहा हूँ जो आप जानते हैं। यदि आप होटल में जाकर कहें, भाई मेरे पास क्या आपका आरक्षण है, भाई मुझे खेद है सब भर चुका है, आप बाहर ठंड में हैं क्योंकि आप आरक्षण करवाने में असफल रहे। और यदि आप अपने जीवन की यात्रा के अंत में आते हैं तो वहाँ पर मिलने के लिए कोई नहीं होगा। आपको अनंत अंधियारे में जाना होगा जहाँ चिल्लाना और रोना और विलाप और दांतों का पीसना होगा। आपके पास होना ही चाहिए, आप नगर में नहीं जा सकते आप, क्योंकि आपके पास आरक्षण नहीं है। आपके पास वो होना ही है कि आप नगर में प्रवेश करें जहाँ यीशु आपके लिए स्थान तैयार करने गया है। स्मरण रहे, आपके पास आरक्षण होना ही है और उद्धार का वस्त्र पहने हुए आप नहीं सकते। मती में मेरे पास पवित्र लेख है, मैं पवित्र शास्त्र में देख रहा हूँ, मती 20:22-14। मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है क्योंकि बहुत देर हो रही है, मैंने बहुत लंबा बोला है आपसे, परंतु स्मरण रखें, राजा ने भेजा और भोज तैयार किया, उसने अपने सारे बैल मारे और मोटे पाले हुए तैयार किए और सब कुछ बड़ा भोज तैयार किया, और उसने बाहर भेजा और बहुतों को आने को कहा एक ने कहा भाई आप जानते हैं कुल मिलाकर मैं इससे संबंधित हूँ, मेरे पास ये है और मुझे अपने खेत पर जाना है, और एक ने बहुत सी चीजें की और उसने फिर भेजा और उन्होंने दुर्व्यवहार किया और अंततः वो यहूदी जाति थी यीशु जिनसे बातें कर रहा था, उन्हें कुछ और ही करना था। तब अंततः उसने भेजा और कहता है जाओ उन्हें विवश मत करो, गलियों और राजमार्गों में जाओ और हर कहीं उन्हें भीतर ले आने के लिए विवश करो। और उसके बाद निश्चित कर दिया कि उसका घर, उसका विवाह का भोज तैयार होने जा रहा था, वहाँ अतिथि होने जा रहे थे। और तब उसने एक मनुष्य को बिना विवाह वस्त्र के पाया, वो उसी पुराने कोट को पहनना चाहता था, और देखिए उसने क्या कहा, मित्र मेरे विवाह के भोज में निमंत्रण पाने के बाद, और मैंने तुझे निमंत्रण दिया और तुझे आने का निमंत्रण दिया, और तू कभी परिस्थिति के अनुकूल था जो मैंने वहाँ पर बहुत बड़ा प्रचार किया, विवाह का भोज वैसे ही अब भी चल रहा है जैसा कि था, दूल्हा वे सब उसके पास बहुत से नेवतेहारे हैं जो उसके पास होने जा रहे हैं। संभवतः भाई कॉप, संभवतः आपने वहाँ भारत में देखा होगा, समझे, उनके बहुत सारे अतिथिगण जिन्हें वो कहने पर हैं, मान लीजिए वो 30 अतिथियों से कहने जा रहा है, अब दूल्हा वस्त्र देने जा रहा है, उसे उन्हें देना है, इसलिए द्वार पर मनुष्य खड़ा है और आप अपने निमंत्रण के साथ आते हैं, वो आपके निमंत्रण पत्र को जांचता और उसे वस्त्र देता है, उनमें से कुछ धनी, कुछ निर्धन, कुछ विभिन्न, परंतु वे सब एक से दिखते हैं, परंतु वे इन वस्त्रों को पहनते वे एक से दिखते, और आप सबको एक सा होना है। आप ये कहने नहीं जा रहे हैं कि मैं यहाँ मेथोडिस्ट हूँ, मैं यहाँ प्रेस्बिटेरियन हूँ, ओ नहीं, पहली बात आप भीतर ही नहीं जा रहे हैं, समझे, आपको द्वार से ही आना है। यीशु ने कहा भेड़शाला का द्वार मैं हूँ, मैं पेंटेकोस्टल हूँ, मैं ये या वो हूँ, इसका कोई अर्थ नहीं, आपको उस द्वार से आना है, और यदि आप उस द्वार से आए हैं तो आपके पास वस्त्र होना ही है। और ये मनुष्य जब उसने कहा मित्र तू यहाँ भीतर कैसे आया, समझे, ये दर्शाया कि वो किसी और मार्ग से आया, परंतु द्वार से होकर नहीं, द्वार से नहीं, वो मार्ग जिससे यीशु आया, अपने ही बलिदान के द्वारा आपका सब परमेश्वर के देते हुए कलवरी को जा रहा है, और कि उसके साथ क्रूस पर चढ़ें और फिर उठे कि अपने बलिदान और मृत्यु के वस्त्र को पहने, और संसार की वस्तुओं के लिए, यदि आप संसार से प्रेम करते हैं या संसार की चीजों से, तो परमेश्वर का प्रेम आप में है ही नहीं, समझे, यदि आप में अब भी संसार का प्रेम है, संसार के समान व्यवहार करना चाहते हैं और संसार के समान करना चाहते हैं, आप यत्न कर रहे हैं, आप फिर भी आप कलीसिया में हैं, परंतु आप एक गोखरू गेहूं के झुंड में हैं, उन सब के साथ चिल्लाता है, उन सब के साथ आनंद करता है, सारी आत्मिक आशीषें आपके साथ हैं। आप कहते हैं कि भाई मैंने भविष्यवाणी की है, ऐसा ही कैफा ने भी की थी, ऐसे बालाम ने की थी, ये कुछ नहीं है, मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है, इसका इससे कुछ लेना देना नहीं, ये केवल आपके लिए एक सांसारिक वरदान है, वास्तविक वरदान आपका प्राण आप में, ये परमेश्वर से जन्मा है, ये परमेश्वर के वचन की सारी चीजों पर नियंत्रण रखता है, आप परमेश्वर की इच्छा पर है, और वहाँ आप बढ़ते हैं, फिर आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियाँ हो जाते हैं, आप परमेश्वर के बालक हैं, और ये चीजें जैसे आप आते हैं एक माँ के समान, अब आप पृथ्वी की गोद में हैं, बाहर आने का यत्न कर रहे हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, सामने आ रहे हैं, और आप देखते हैं वचन कहता है मुझे ये करना चाहिए, मुझे फिर जन्म लेना चाहिए, मैं कलीसिया से संबंधित हूँ, इसका कोई अर्थ नहीं है, समझे, मैं मेथोडिस्ट हूँ, मेरी माँ ये आपकी माँ के लिए भला है, मैं पेंटेकोस्टल हूँ, मैं संबंधित हूँ, यदि आप वचन के साथ नहीं है तो वहाँ कुछ गड़बड़ है, समझे, तब आप देखते हैं कि आपका वास्तविक पिता परमेश्वर नहीं है, समझे, क्योंकि वो वास्तविक आपके प्राण में आरंभ होता है, इसके पहले की कोई आत्मा थी, ये आपका प्राण था, तो वो प्राण परमेश्वर से नहीं आया, तो फिर ये आरंभ से परमेश्वर का जीवांश नहीं था, आपको धोखा हुआ, आप झाड़ियों के झुंड में थे और संसार के अभिलेख रखते हैं, और आने वाली झाड़ियों का संसार के समान व्यवहार कर रहे हैं, संसार से प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आप में नहीं है, और अब वो वहाँ झूठे अभिषिक्त होंगे, अंत के दिनों में झूठे यीशु नहीं, वे इसके लिए खड़े नहीं होंगे, परंतु झूठे अभिषिक्त, जी हाँ श्रीमान, वे अभिषिक्त हैं, परंतु वे मसीह विरोधी हैं, वे उस आत्मा से अभिषिक्त हैं कि उन आश्चर्य कर्मों को करें जिन्हें मसीह ने किया, परंतु उसके वचन के साथ मेल नहीं खाते, समझे, उस दिन बहुत से मेरे पास आएंगे और कहते हैं प्रभु क्या मैंने भविष्यवाणी नहीं की, और क्या मैंने आपके नाम से प्रेत आत्माओं को निकाला, वो कहता है मुझसे दूर हो जा तुम जो कुकर्म करने वाले, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, प्रभु मैं पेंटेकोस्टल था, परमेश्वर की स्तुति हो, मैं चिल्लाया, मैंने अन्य भाषा बोली, मैंने बीमारों पर हाथ रखे और उन्हें चंगा किया, प्रेतों को निकाला, मुझसे दूर हो जाओ तुम जो कुकर्म करने वाले हो, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, देखिए मेरा क्या अर्थ है, ओ छोटे बालको, क्या आप उस विटामिन की आवश्यकता को अनुभव करते हैं, आज रात्रि वो कुछ है, वहाँ एक देह प्रतीक्षा कर रही है, एक देह है जो स्वीकार के लिए प्रतीक्षा कर रही है। लोगों, धोखे में ना आओ, धोखे में ना आओ, शैतान धोखेबाज है। आपको विवाह का वस्त्र पहनना ही है, ये होना ही है। अब हम सांझ के समय में हैं, पृथ्वी की देह अब समाप्त होने को तैयार है और हम स्वर्गीय में प्रवेश करने को तैयार हैं और हम अब परमेश्वर की विचित्र बुलाहट का अनुभव करते हैं इस महान अदन को जाने को। और इसके पहले कि हम यहाँ जन्म लें, हमारी छोटी देहें किसी चीज के लिए पुकारती हैं जो कि मिलनी ही थी, या हम यहाँ दुखी बालक होंगे यदि हम नहीं थे। परमेश्वर के वहाँ दुख नहीं है, वे हरे पूरी रीति से पंक्तिबद्ध है, दुल्हन ठीक दूल्हे के सामने है, वचन अपनी ऋतु में प्रकट हुआ। परमेश्वर आज रात्रि अपने बालकों को प्रदान करे, आप में से प्रत्येक को वहाँ एक स्वर्ग है कि वहाँ जाएं, एक नरक उससे अलग रहें। अब आप में से बहुत से जानते हैं कि प्रभु ने मुझे दर्शन दिए हैं, वे हजारों हैं। महानतम बात, मैं मृत्यु से डरा करता था। लगभग 3 वर्ष पहले अपने क्रिश्चियन बिजनेसमैन देखा होगा, बीते समय का पर्दा। मैं अनुभव करता हूं कि आज रात्रि मैं जीवित नहीं रह सकता था, मैं आपको यहां फिर इस जीवन में नहीं देख सकता था, परंतु ये सत्य है। मैं नहीं जानता कि इसे दर्शन कहूं या ये क्या था। हाल ही में एक प्रातः मैं बस जागा ही था, मैं सभाओं से आया था और मेरी पत्नी वहीं सो रही थी। मैंने कहा, प्रिय क्या आप जाग रही हैं? वो अब भी सो रही थी। मैं जानता था कि हमें उठना है कि बालकों को विद्यालय भेजें, और मैंने अपने हाथ पीछे इस प्रकार से रखे और मैंने कहा, अच्छा। कहते हैं, बिली ब्रैनम, तुम जानते हो कि तुम 50 पार कर चुके हो, तुम यदि प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हो तो तुम जल्दी करो क्योंकि तुम्हारे पास अधिक समय नहीं है। मैंने सोचा, ओ प्रभु, मैं आशा करता हूँ कि मैं जीवित रह सकता हूँ कि प्रभु यीशु को आते हुए देखूँ। सदा मेरे मस्तिष्क में ये रहा कि जब हम मरे मैं ऐसा दिखूंगा। भाई यहाँ मैं कहूँगा, हाँ, आपने मेरी कलीसिया में प्रचार किया है, एक रात्रि वहाँ पृथ्वी पर भाई ब्रैनम, परंतु वो एक आत्मा है, मैं उसे हाथ नहीं मिला सकता था क्योंकि उसका हाथ वहाँ कब्र में है, सड़ गया। देखा, मेरा भी, मैं इस प्रकार से सोचा करता था। परंतु उस प्रातः जब मैंने अनुभव किया कि कुछ मेरे ऊपर आ रहा है, मैंने सोचा, अक्सर जैसे दर्शन आता है, और मैंने देखा, मैंने सोचा, ओ ये क्या है। और मैंने बहुत बड़े हरे पहाड़ देखे और युवा महिलाएं और सब आ रही थीं, दसियों हजार, सैकड़ों हजारों, और वे सब आ रहे थे। लंबे बाल उनकी पीठ पर लटक रहे थे, सफेद वस्त्र पहने हुए, नंगे पैर, शोर करते हुए, हमारा भाई। मैंने सोचा, ये विचित्र है। मैं पीछे घूमा और देखा, और वहाँ मैं लेटा हुआ हूँ और मेरी पत्नी वहाँ पलंग पर लेटी है। और मैंने कहा, अब तुम क्या जानते हो, मैं मर गया, ये यही हो गया, मैं मर गया हूँ। और मैंने कहा, मुझे हृदयघात हुआ या कुछ, मैं मर गया, यहाँ मेरा शरीर पड़ा है। मैं अपने हाथ पीछे करे लेटा था इस प्रकार से, जैसे अकड़ा हुआ। मैंने सोचा, ये मुझसे 20 फीट नहीं था, और मैं वहाँ था, देख रहा था। मैंने सोचा, ये मेरी पत्नी वहाँ पर है, वहाँ सब कुछ है, वहाँ पलंग के पास मेरी कमीज टंगी थी। मैंने सोचा, यहाँ मैं हूँ। मैंने फिर चारों ओर देखा और ये सारी महिलाएं आ रही थीं, और वे थीं। मैंने देखा, इस ओर से आ रही थीं, और वहाँ मेरे भाई लोग, ओ वे वास्तविक थे, वे सारे युवा दिखाई दे रहे थे, वे चिल्ला रहे थे, हमारा मूल्यवान भाई। मैं नहीं जान पाया कि क्या सोचूं। मैंने सोचा, ये विचित्र है। मैंने मुड़कर देखा और मैं बूढ़ा मनुष्य नहीं था, मैं युवा था। मैंने सोचा, ये विचित्र बात है। मैंने सोचा, क्या ये दर्शन है? मैं अपनी उंगली काटूंगा। और मैंने सोचा, नहीं, ये तो दर्शन सा नहीं है जो मुझे होते हैं। तब वहाँ कोई चीज मुझसे ऊपर से बातें करने लगी और कहा, तुम अपने लोगों में आ गए हो। मैंने सोचा, अपने लोगों के साथ, क्या ये सब ब्रैनम है? उसने कहा, ये मसीह में तुम्हारे मत परिवर्तक हैं। और ये महिलाएं, आप जानते हैं, मुझे सदा से जाना गया है कि मैं स्त्रियों से घृणा करता हूं, परंतु मैं नहीं हूं, समझे, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं। मैं अनैतिकता, असभ्य नहीं पसंद करता, मैं मसीह की वास्तविक सच्ची बहनों को पसंद करता हूं। यदि ऐसा है तो ठीक है। जब मैं बालक था तो कुछ दाग हुए थे, मैं जानता हूं जो चीजें घटित हुई उसी ने मुझे इस प्रकार से बदला, परंतु ये सब परमेश्वर से था, मुझे तोड़ मरोड़ रहा था इस घड़ी के लिए, समझे। मैं वास्तविक सच्ची बहन के लिए सोचता हूँ, इससे अच्छा और कुछ नहीं। यदि परमेश्वर उद्धार को छोड़ मनुष्य को कुछ अच्छा दे सकता था तो वो उसे एक पत्नी देता, समझे। और इस प्रकार से फिर यदि वो कुछ अच्छा दे सकता था तो वो दे देता, और फिर उन्हें पलट कर देखते हुए और पत्नी के समान व्यवहार नहीं करती, अनिष्ठावान, अपने विवाह की प्रतिज्ञा के प्रति, और उनके पति भी उसी प्रकार। स्मरण रहे, जब तक आप जीवित हैं आप एक दूसरे से बंधे हैं, जो परमेश्वर पृथ्वी पर बांधता है स्वर्ग में भी बांधता है, समझे। और इसलिए फिर मैंने देखा और ये महिलाएं भागी और अपने हाथ मेरे चारों ओर डाले और मुझे गले लगा रही थी और मुझे भाई कहा। अब वे महिलाएं थीं, परंतु उस स्थान पर पाप हो ही नहीं सकता था, समझे। वे महिलाएं थी, परंतु देखिए हमें किसने बनाया, एक महिला उन ग्रंथियों के साथ, स्त्री ग्रंथी, और पुरुष पुरुष ग्रंथियों के साथ, ये बालकों को जन्माने के लिए। वहाँ ये नहीं होगी, वहाँ एक ही ग्रंथी होगी, परंतु अब भी उस रूप में होंगे, पृथ्वी का रूप जो है वो वहाँ होगा, परंतु वहाँ पाप कभी नहीं होगा, आप सब एक समान होंगे। वहाँ बालक नहीं जन्मेंगे कि उन्हें पालें, ये ठीक इसी प्रकार से होगा। और इस प्रकार मैंने देखा वे महिलाएं, और उन्होंने मुझे उठाया और इन भाइयों ने मुझे एक स्थान में बैठा दिया। मैंने कहा आपने ये क्यों किया? उसने कहा पृथ्वी पर आप अगुआ थे और कहा आप ये लोग हैं। और वहाँ एक महिला आई और उसने कहा हमारा मूल्यवान भाई, बहुत ही सुंदर स्त्री। जब वो चली गई, इस आवाज ने रोका, कहा क्या तुम्हें इसकी याद है? मैंने कहा नहीं। कहा आपने इसकी मसीह तक अगुवाई की जब वो 90 वर्ष की हो चुकी थी, समझे। क्या आप नहीं समझ सके कि उसने मूल्यवान भाई क्यों कहा? मैंने कहा अच्छा, क्या आप जानते हैं? कहा नहीं, हम यहाँ पर प्रतीक्षा करते हैं। मैंने कहा ठीक है, यदि मैं मर गया हूँ तो मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। कहा आप अभी उसे नहीं देख सकते। कहा ये वचन है। कहा प्राण जो वेदी के नीचे है वो थोड़ा सा ऊपर है, किसी दिन वो वापस आएगा तो हम पृथ्वी पर वापस जाएंगे, हम यहाँ खाते पीते नहीं हैं। मैंने कहा आपका अर्थ मैं इससे डरता था? क्यों ये? मित्रों इसे बोलने के लिए शब्द नहीं है, ये सिद्ध है, मुकाबला नहीं, भव्य। अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं जानता जो इसे प्रकट कर सके कि क्या है ये जो मैं जानता हूँ, किसी भी चीज से इससे ये सबसे परे है। वहाँ वो था, वहाँ कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं, आप मर नहीं सकते, आप पाप नहीं कर सकते, ये बस सिद्ध है, बस सिद्ध है। मित्रों इसमें ना चूको, आपको इसमें चूकना नहीं चाहिए, स्मरण रहे। और जब मैं छोटा लड़का था, मैंने नरक का दर्शन देखा एक छोटे लड़के के समान। और आप जानते हैं कि आज महिलाएं कैसी हैं, या स्त्रियां, महिलाएं इस प्रकार की चीजें नहीं करती, भिड़िए के समान अपनी आँखों को रंगना या कुछ इस प्रकार से आँखों के नीचे नीला नीला। मैंने ये देखा, मैं एक छोटे लड़के के समान मैं बेहोश सा हो रहा था, मुझे गोली लगी थी और मैं पड़ा हुआ अस्पताल में मर रहा था, और मुझे सदा ये मालूम था कि कहीं परमेश्वर है। मुझे पहली प्रार्थना स्मरण है जो मैंने कभी करने का यत्न किया, केवल मैं यही कर सकता था। मैंने ये कभी पहले नहीं बताया, मुझे लगता है मैं अभी बता दूं। मुझे गोली लगी थी, वहाँ पड़ा, और केवल एक तर्क जो मैं परमेश्वर को दे सकता था, मैंने कहा प्रभु आप जानते हैं मैंने कभी व्यभिचार नहीं किया, समझे। एक नवयुवक के समान लगभग 15 वर्ष का मैंने सही जीने का यत्न किया, और मैंने कहा मैंने स्वच्छ जीवन जिया है, और यही मैं कह सकता था, यही योग्यता जो मैं उसे दिखा सकता था। और वहाँ पड़ा हुआ जब डॉक्टर मेरे पास से जा चुका था, और मैं स्वयं अंधकार की अनंतता में डूब रहा था, और ऐसा लगा, मैं पिता को सहायता के लिए चिल्लाया, ओ पिताजी मेरी सहायता करें, वहाँ पिताजी नहीं थे। माँ मेरी सहायता करो, वहाँ माँ नहीं थी। परमेश्वर मेरी सहायता करो, वहाँ परमेश्वर नहीं था। ये बस अनंत भयानक और दुस्वप्न जल रहा था, धधकता हुआ नरक आनंद में होगा इसके दूसरे ओर, और वहाँ से होता हुआ गिर रहा था। मैंने सोचा ओ प्रभु, इस प्रकार से, और मैं एक स्थान में पहुँच गया, धुआं और अंधेरा और बीमार, और ओ ऐसा अनुभव, ये मेरे ऊपर मृत्यु थी। और मैं उन स्त्रियों को देख सकता था जो मेरी ओर आ रही थी, उनकी रंगी हुई आँखें थी। इस प्रकार से अब स्मरण रखें, ये 45 वर्ष पहले जो भी हो जा रही थी, वे जा रही थी। ओह ओह ओह, मैंने कहा क्या मैं यहाँ सदा के लिए हूँ, सदा के लिए? मैंने कहा ओ परमेश्वर, यदि आप मुझे यहाँ से निकाल दें तो मैं आपसे फिर कभी लज्जित नहीं होऊंगा, मैं कभी भी लज्जित नहीं होऊंगा। परमेश्वर मुझे एक अवसर दे दें। पहली बात आप जानते हैं, मैंने अपने आप को वापस आते हुए अनुभव किया, और डॉक्टर को सचेत किया गया, क्योंकि मेरा हृदय एक मिनट में 17 बार धड़क रहा था, मेरा सारा लहू बह गया था, और आदि आदि अपने ही लहू में पड़ा हुआ था। और मैं चकित हुआ कि किसी दिन ये होगा। लगभग 2 वर्षों पहले जब मैं ट्यूसान में गया, मैं अपनी पत्नी के साथ जेसी पेनी में था। मैं वहाँ इस प्रकार से बैठा हुआ था, अपना सिर झुकाए हुए बैठा प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि कैसे महिलाएं वे लंबे समय से खरीदराई कर रही थी। और मैं वहाँ बैठा हुआ था, मेरा सर इस प्रकार से झुका हुआ था, और स्वचालित सीढ़ी ऊपर आ रही थी, उसमें वाटर हेड बाल वाले आ रहे थे, आप जानते हैं कि जैसा वे करते हैं इस प्रकार, नीली रंगी आंखों के साथ ऊपर आ रहे थे, और वे स्पेनिश भाषा बोल रहे थे। और यही था, ये फिर से हुआ वो दर्शन, यही था। ओह ओह, भाई बहनों मैं आपको कुछ बताऊं, ये अब अजीब लग सकता है, परंतु आप एक बार वहां पहुंचे, ये गंभीर बात है, आप कभी भी उस मार्ग पर ना जाएं। मैं एक बूढ़े मनुष्य के समान एक सेवक, मैंने समस्त संसार में प्रचार किया है, लाखों मित्र हैं, परंतु मैं जानता हूं कि मुझे वहां आपके साथ खड़ा होना है। संसार की चीजें अलग हो जाएं, और यदि आप में कुछ है कि आप अब वैसे ही व्यवहार करना चाहते हैं जैसे आप करते हैं, यदि संसार की बातें आपके अंदर हैं, स्मरण रखें, आप परमेश्वर के कुछ नहीं हैं, आप बस कलीसिया के सदस्य हैं। जब तक वो बुलाहट ना हो, वो गहराई गहराई को पुकारती है, समझे? इसके पहले कि मछली के पीठ पर सिन्ना हो, उसके तैरने के लिए पहले पानी होना चाहिए था, या फिर कभी भी सिन्ना नहीं होता। इसके पहले कि पृथ्वी पर वृक्ष उगता, पृथ्वी का होना अवश्य था, या फिर उस पर उगने के लिए वृक्ष नहीं होता, वृक्ष होने का कोई औचित्य नहीं और इसे साथ साथ विद्यमान हो। इसके पहले कोई सृष्टि हो, कोई सृष्टिकर्ता होना है। धन्य हैं वे जो धर्म धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, समझे? हम में कुछ है, थोड़ी देर पहले आपने हाथ उठाया, मैं परमेश्वर को और अधिक चाहता हूँ, समझे? वहाँ किसी चीज की आवश्यकता है, और यदि आप संसार से प्रेम करते हैं, उस मार्ग पर जा रहे हैं, संसार की चीजों में आप संसार की यात्रा पर जाएंगे और आप गिरावट में होंगे, समझे? बाहर आए, आप एक राजा के पुत्र और पुत्रियाँ हैं, एक राजा। सभ्य पुरुष और स्त्रियां बने, मसीहों के समान चलें, मसीहों के समान जीवन बिताएं, मसीहों के समान व्यवहार करें, स्मरण रहे। मैं आपसे न्याय पर इसी टिप्पणी के साथ मिलूंगा, समझे? अपने दर्पण में देखें आज रात्रि और देखें कि मैं किस ओर बढ़ रहा हूँ। क्या यीशु मेरे लिए एक स्थान तैयार कर रहा है, एक देह? वो देह सिद्ध है, देह नियम में चलती है, ये पुत्र या पुत्री परमेश्वर के सन्मुख है। और मुझे यहाँ जच्चा की पीड़ाएं हैं कि उस देह में जन्म लूं। यदि मैं अब भी संसार से प्रेम रखता हूँ तो ये दर्शाता है कि वहाँ मेरी कोई देह नहीं है। मैं नहीं हूँ, मैं बस कलीसिया का सदस्य हूँ, मैं परमेश्वर का जीवांश नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, वो मेरा पिता नहीं है। उसने कहा यदि तुम ताड़ना में स्थिर नहीं रह सकते तो जो अब तुम्हें मिल रही है, तो तुम व्यभिचार की संतान हो और परमेश्वर के बालक नहीं। क्या ये ठीक बात नहीं है? क्या बाइबल ये नहीं कहती? यदि तुम परमेश्वर की ताड़ना में स्थिर नहीं रह सकते, जब आप देखते हैं कि वचन आपको सीधा कर रहा है और आप कहते हैं ओ मैं ये चीजें सुनना नहीं चाहता, मैं एक मसीही हूँ, मैं ठीक है, आगे बढ़े, समझे? ये एक निश्चित प्रमाण है कि आप परमेश्वर के बालक नहीं है। परंतु परमेश्वर का वास्तविक बालक भूखा और प्यासा है। क्यों? यदि आपके हृदय में कुछ है, आपको बता रहा है, आप चाहते हैं और इसकी वहाँ आवश्यकता है, ये दर्शाता है कुछ धड़क रहा है, आपको वहाँ खींचने का यत्न कर रहा है, वहाँ एक देह है, ये वाली उसकी छाया है। इसका आप किस लिए प्रयोग कर रहे हैं कि शैतान और संसार की महिमा करें और फैशन की चीजें? क्या आप स्वर्ग की ओर देख रहे हैं? वहाँ कुछ है, आप परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से कर रहे हैं। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता और मैं जाऊंगा और जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। वो बातें जो होने को हैं, ये चीजें जो अब हैं, केवल संभावित हैं, होने वाली बातों के लिए बुला रही हैं। हम प्रार्थना करें। गंभीरता से सोचें प्रिय मसीही मित्रों, क्या आप सोचेंगे? वास्तव में गंभीर होकर सोचें, एक क्षण के लिए हम बिल्कुल शांत रहें, पवित्र आत्मा को बोलने दें। अब बहुत पहले प्रभु यीशु ने मुझे आप पेंतिकोस्तनों के पास भेजा है। यहाँ आप में से एक लड़का जो आपका पास्टर होने को ऊपर बढ़ रहा है, कहा सेवकाई का परिणाम है। उसने प्रभु यीशु को अंधी आंखें खोलते देखा है, बनाई। उसने कहा वे वाटर हेड बाल वाले वहीं चुप हो गए, मैं अब भी चंगाई की सभाएं कर रहा हूँ, परंतु मैं अनुभव करता हूँ कि मैंने बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना की है जो बहुत बीमार थे, वे चंगे हो गए थे, प्रभु ने प्रार्थना का उत्तर दिया है और बीमारों को चंगा किया है। परंतु आप जानते हैं इनमें से कुछ लोग चंगे हुए और मर चुके हैं, और कोई मतलब नहीं आप कितने बीमार हैं, यदि आप चंगे हो गए हैं तो जो भी है आप मरने वाले हैं। परंतु वे प्राण, मेरे मूल्यवान भाई बहन, क्या आप इस विषय में नहीं सोचते? ये अनंत है। यदि वो परमेश्वर का प्रेम नहीं है, वहाँ कोई खिंचाव नहीं है, क्या आप परमेश्वर से नहीं मांगेंगे, ओ परमेश्वर मुझे नई शुरुआत दे दें आज रात्रि, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ, और मेरे हृदय में कोई मुझे बताता है कि मुझे आपके समीप रहना चाहिए, मैं अभी आना चाहता हूँ प्रभु, और इसे करें। यदि वो व्यक्ति या लोग जो इस भवन में हैं या इस भवन से बाहर हैं, यीशु मसीह के नाम में उसके दास होने के नाते कहता हूँ, क्या आप अपने झुके हुए सिरों के साथ अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएंगे और इतना कहें, परमेश्वर मुझे अपने पास खींच लें, प्रिय परमेश्वर मैं आपके हर उस वचन से अपने को मिलाना चाहता हूँ। अपने हाथ उठाएं, अब वास्तविक ईमानदारी के साथ जरा सोचें। अब वे कहते हैं, ओह मैंने ये किया, मैं चिल्लाया हूँ, आत्मा मैंने भाषाएं बोली हैं, परंतु देखिए मेरे जीवन में किसी चीज की घटी है। मैं परमेश्वर के वचन के दर्पण में देखता हूँ, मैं जानता हूँ वहाँ कुछ है, मैं आराधना ले जाता हूँ, परंतु मैं वो नहीं हूँ जो मुझे होना चाहिए। समझे, ये वो कुछ दिखाता है। अब यदि आप स्वयं को देख सकते हैं और देखते हैं कि आप परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाते और वहाँ ऐसा कुछ नहीं जो आपके हाथ उठाने का कारण होगा, तब आप जानते हैं कि कोई गड़बड़ है आप में। वो माँ कहा करती थी कि आप शलगम में से लहू नहीं निकाल सकते क्योंकि उसमें लहू है ही नहीं। समझे, इसे बहुत ही गंभीरता से सोचें। संभव है ये आपका अंतिम सौभाग्य हो। 30-40 हाथ उठे हैं। ये छोटा झुंड यहाँ पर है, यहाँ तक कि धर्म प्रांतीय क्षण भर के लिए वास्तव में आदर भाव में रहें। अब सही में सीधा सीधा सोचें, प्रिय परमेश्वर, आज रात्रि मैं दुर्घटना में मर सकता हूँ, मैं हृदयघात में मर सकता हूँ, किसी प्रातः में डॉक्टर को बुला सकता हूँ और वो आता है, मेरी नाड़ी ऊपर की ओर चली गई, मैं गया, मैं अपना मुंह तकिए में दबा रहा हूँ, पुकारता हूँ, ओ परमेश्वर, ओ परमेश्वर, ओ परमेश्वर। देखा, हृदय अपनी अंतिम धड़कन पर है, आप उस महान द्वार पर हैं। आप तब तक कभी बाहर नहीं आ सकते जब तक कि आप नया जन्म परमेश्वर की आत्मा से ना पाएं। आप कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे जब तक कि आप में कुछ ना हो। परमेश्वर के आत्मा से जन्म लेने के पश्चात परमेश्वर के संग भूख और प्यास बढ़ती जाती है, ये होना ही है। देखा, आप पृथ्वी पर, पृथ्वी के बालक उसकी गोद में हैं और अब भी परमेश्वर के राज्य में जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जहां वो आपके लिए दूसरी देह तैयार करने को गया है, वो सिद्ध देह है। अब गहराई से सोचें और हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, जैसे कि मैं जानता हूँ ये पुस्तक में, अभिलेख में, प्रभु हमने विज्ञान में भारी भूल की है, हमें जगाने के लिए पर्याप्त है, वास्तविकता जानने के लिए हर कार्य जो हम करते हैं वो समस्त संसार में जाता है, ठीक उसी समय जब हम करते हैं। हम ये टेलीविजन के द्वारा पाते हैं पिता, हम अनुभव करते हैं कि टेलीविजन चित्र नहीं बनाता, ये तो केवल आवृत्ति को एक नलिका में लेता है और चित्र बनता है। यहाँ तक कि कपड़ों के रंग जो हम पहनते हैं वायु की आवृत्ति से दिखते हैं, ये आवृत्ति जो समस्त संसार में है। तो फिर कैसे हमारी बहनें वे वस्त्र पहने हैं, इस प्रकार व्यवहार कर रही हैं और भूख तक नहीं, रंगे हुए चेहरे, कटे बाल। सेवक जो धर्म विद्यालय में जाते हैं और किसी धर्म विद्यालय में और मनुष्य के वचन की चीजें लेते हैं जो उनके रिवाजों के द्वारा बनती हैं, उसे परमेश्वर की आज्ञा बनाते हैं, जो लोगों पर प्रभावहीन अपनी रीतियों के द्वारा कह रहे हैं कि उन्हें कलीसिया से संबंधित होना चाहिए बस। ओ परमेश्वर, क्या वे अनुभव कर रहे हैं कि जो हर वचन हम कहते हैं वैज्ञानिक रीति पर सिद्ध, ये अभिलेख में है और ये आरंभ होता है जब हम पृथ्वी पर रहना आरंभ करते हैं, ये समाप्त हो जाता है जब हम मरते हैं और ये परमेश्वर की एल्बम में रखा जाता है कि फिर से न्याय पर चलाए जाए। हम इससे कैसे बचने वाले हैं परमेश्वर के नरक दंड से, यदि चीजें हमारी सन्मुख इतनी स्पष्ट कर दी गई हैं और फिर भी हम इसे अस्वीकार कर देते हैं। ओ प्रिय परमेश्वर, ये वचन कभी नहीं मरते, ये आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं, अभिलेख न्याय के दिन दर्शाया जाएगा। पिता, आपने उन हाथों को देखा है जो ऊपर उठे, ये ठीक न्याय के दिन वहाँ होंगे और ये भी कि जो उनके हृदय सोच रहे थे वहाँ न्याय के दिन होंगे। अब पिता परमेश्वर, मैं आपसे मांगता हूँ, आपके एक दास के समान मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सारे अधर्म अपने लोगों पर से ले लेंगे, अधर्म कुछ वो जो हम जानते हैं हमें करना चाहिए और नहीं करते। दाऊद ने कहा, यदि मैं अपने हृदय में पाप करूं, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि आप हमारे अधर्म को ले लेंगे, क्योंकि वचन आपका दर्पण है जो हमें दर्शाता है कि हम में राजा के पुत्र और पुत्रियां होने के नाते कैसी कमियां हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज रात्रि आप करेंगे और इसे वेदी बनाते हैं, क्योंकि वेदी लोगों से भरी पड़ी है और इस वेदी को जो बनाते हैं वही कुर्सी में जहां वे बैठे हैं, उनके हृदय को उनकी वेदी बनाएं। होने पाए कि हर भाई और बहन जो यहां हैं उनसे संसार हिल जाए और होने पाए कि वो जीवन का छोटा जीवांश, परमेश्वर का जीवांश जिसकी हमने बातें की हैं, वो गुण जो परमेश्वर से आए हैं परमेश्वर के सम्मान और महिमा के लिए प्रकट किए गए हैं, परमेश्वर ने इससे संसार में हलचल कर दी। दूसरे प्रभु में प्रार्थना नहीं कर सकता क्योंकि बीमारी मृत्यु की है और वहाँ कुछ नहीं है जो उनमें हलचल का कारण हो, परंतु वे जो हिल सकते हैं और जानते हैं कि यह गलत है, उनके हृदय और उनके प्राणों को आज रात्रि शुद्ध कर दें पिता, और वे आपके आत्मा से भर जाएं, आपकी ज्योति में चलें। प्रभु इस प्रिय युवा स्वस्थ मजबूत दिखने वाले पास्टर को आशीषित करें। ये युवा पुरुष प्रभावित है, उसने कहा किसके द्वारा, उसने देखा कि आप करते हैं। ये अच्छा युवा पुरुष, ओ परमेश्वर इसके प्राण को ज्वलंत कर दें, प्रभु इसे प्रदान करें। ये निरंतर सच्चा गरड़िया हो, सारे समय और झुंड को चराए, और जिस पर पवित्र आत्मा ने उसे रखवाला ठहराया है, प्रभु इसे प्रदान करें। ये दाएं या बाएं ना मुड़े, मत्सार के लिए कोई स्थान नहीं, कुछ नहीं, केवल परमेश्वर का शुद्ध वचन उसके मुख से आए, और केवल वही। उसे आशीषित करें परमेश्वर, उसे और उसके प्रियजनों को और उसकी छोटी कलीसिया को, पिता उन सब के साथ हों। पिता मैं ये आपको समर्पित करता हूँ, बीज बो दिया गया, ये उसी बीज पर पड़े हैं जो जीवन के लिए अभिषिक्त हैं, और खूब बढ़े यहाँ इस झुंड के लिए मजबूत मसीही और दूसरे झुंडों के लिए जहाँ से वे आए हैं, प्रभु इसे प्रदान करें। मैं ये आपको समर्पित करता हूँ यीशु मसीह के नाम, परमेश्वर के पुत्र। और पिता वो हमारे अपराधों के लिए घायल हुआ, हमारे अधर्म के लिए कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उसके मार खाने से हम चंगे हुए। मैंने थोड़ी देर पहले देखा एक बेचारी अधीर महिला द्वार से आ रही थी, और ओ परमेश्वर उसका अपना परिवार, कितनी महान बात हुई, आपने कैसे स्वयं को प्रकट किया। परमेश्वर मैं इस महिला के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु उसके बीते समय को ले लें और आज रात्रि उसे चंगा करें। प्रभु क्या आप करेंगे, उसे आपके पास लाते हैं। इसे देखें, छोटे छोटे बालक यहाँ पर बैठे हैं, प्रभु चंगाई की आवश्यकता है, और पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उसे चंगा करेंगे, इसे प्रदान करें, आपकी महान चंगाई की सामर्थ आए और हमें चंगा करे, प्राण और शरीर दोनों को। और अब आपको, आप जो यहाँ कलीसिया में या बाहर हैं, चंगाई की आवश्यकता है, मैं चाहता हूँ कि आप अपने हाथ उठाएं, कहें भाई बहन मुझे चंगाई की आवश्यकता है। ऐसा दिखता है हर कोई करता है, ठीक है, क्या आप मेरा मसीह का दास होने का विश्वास करते हैं, तो आमीन कहें। तो फिर मैं चाहता हूँ कि अपने हाथ एक दूसरे पर रखें, बस अपने हाथ एक दूसरे पर रखें। आप अपने हाथ उठाएं, वे जो भीतर या बाहर हैं, आप अपने हाथ उठाएं कि परमेश्वर में विश्वासी हैं। यीशु मसीह ने कहा उसका कलीसिया को अंतिम प्राधिकार, सारे संसार में जाओ और हर प्राणी को सुसमाचार प्रचार करो। वो जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उद्धार पाएगा, जो विश्वास न करे वो दोषी ठहराया जाएगा, और विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे, यदि वे सांपों को उठा लें या नाशक वस्तु पी लें तो उनकी हानि ना होगी, परंतु और यदि वे अपने हाथ बीमारों पर रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे। अब ये यीशु ने कहा, स्मरण रखें, ये उसने कहा, ये होना ही है, उसने ये नहीं कहा जब तक कि कोई वचन को ना पकड़ ले, जैसे कि मरियम का गर्भ जीवांश को पकड़ सका, एक कुंवारी गर्भवती होगी, जैसे कि खजूर के वृक्ष की सृष्टि की जाए या एक बांज का वृक्ष पहाड़ पर, उसके वचन ने ये किया। उसका वचन अभी आपके हृदय में पकड़ा जा सकता है, मैं एक विश्वासी हूँ प्रभु, ये पुरुष या महिला जिस पर मैंने अपना हाथ रखा है ये पीड़ित हैं, मैं अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वे मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं महिला के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ या उसके लिए, और ओ परमेश्वर उसे चंगा करें। और मैं एक विश्वासी हूँ, और हम अब मिले हुए हैं, हमें अभी सिखाया गया है कि हम मसीह के साथ थे जब वो इस पृथ्वी पर चला फिरा, क्योंकि हम उसके वचन के भाग हैं, हमने उसके साथ दुख उठाया, उसके संग लहू बहाया, हम उसके संग मरे, हम उसके संग गाड़े गए, हम उसके संग जी उठे, और हम स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु के साथ बैठे हैं। वो महान राजा हमारे मध्य में बैठा हुआ है, और मैं उसका पुत्र या पुत्री हूँ इस राजा का, और मैंने अपना हाथ राजा के पुत्र या पुत्री पर रखा हुआ है, जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अब प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर दें, और परमेश्वर के इस पुत्र या परमेश्वर की इस पुत्री को चंगा करें। अब हम एक साथ मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम नम्रता के साथ आते हैं और अपनी गलतियों को मान लेते हैं, हम आते स्वीकार करते हैं कि हम बीमारी और मृत्यु के योग्य हैं और दुख, परंतु हम स्वीकार कर रहे हैं कि आप ही हमारे पापों और हमारे रोगों के लिए मात्र एक हैं। और आज रात्रि परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां यहां बैठे हैं और वचन के द्वारा सुधार को सुनते और अपने हाथ उठा रहे हैं और समीप चलना चाहते हैं। वे अब एक दूसरे पर हाथ रखे हैं क्योंकि वे तेरे वचन का सत्य होने का विश्वास करते हैं। वे विश्वास करते हैं कि हम मसीह के साथ जी उठे हैं, उसके संग स्वर्गीय स्थान में बैठे हैं। उन्होंने अपने हाथ एक दूसरे पर रख रखे हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपने कहा कि विश्वास की प्रार्थना रोगी को बचा लेगी और परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने कोई पाप किया हो तो उसका वो पाप क्षमा कर दिया जाएगा। अपनी गलतियों को एक दूसरे से मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम चंगे हो जाओ, क्योंकि धर्मोत्साही की प्रभावी प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। ओ अनंत पिता, अपने दासों की प्रार्थनाओं को सुन। और ये फिर लिखा हुआ है कि यदि लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं एक संग मिलकर प्रार्थना करें तो मैं स्वर्ग से सुन लूंगा। ओ परमेश्वर, आज रात्रि अपने बालकों की प्रार्थना को स्वर्ग से सुन और इस मंडली पर अपना पवित्र आत्मा नीचे भेज एक तेज आंधी के समान, और हम इन लोगों को परमेश्वर के सम्मुख लाते हैं। शैतान, तू हार गया है, तू हारा हुआ है। यीशु मसीह ने तुझे कैलवरी पर जीत लिया। तुझ में कोई सामर्थ नहीं है, तू धोखेबाज है। आज रात्रि हम आपके हाथ को पुकारते हैं, यीशु मसीह के नाम में यहाँ इन लोगों में से बाहर आ जा। तू रोग और बीमारी और ये यीशु मसीह के नाम में स्वतंत्र हो जाएं, परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा का अनुभव करें, अनुभव करें कि आपकी प्रार्थना का उत्तर दे दिया गया है। आप विश्वास करते हैं, आपके पास बैठे व्यक्ति को परमेश्वर ने उत्तर दे दिया। कितने ये विश्वास करते हैं, अपने हाथों को उठाएं। आप वही हैं और अद्भुत है।
Do you mean with all your heart now? How many feel that God has forgiven your iniquities, the things that you've done, and from this night on, oh Lamb of God, I promise to walk upright. I walk in honor of the name that I'm called, a Christian, Christ-like life. I raise my hands, God. I dedicate myself anew to you tonight. I'll walk in the light. Amen. We'll walk in the light, beautiful light. Come where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. We'll walk in the light. It's such a beautiful light. It comes where the dewdrop, where he's gone to prepare a place for us. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Come all ye saints of light proclaim. Jesus, the light of the world. Truth and mercy in his name. Jesus, the light of the world. What will we do then? We'll walk in the light. Such a beautiful light comes where the dewdrop of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of.
ओ, क्या आप अनुभव करते हैं कि सब धुल गया? अच्छा अनुभव करते हैं। आइए हम हाथ मिलाएं जैसे कि हम फिर से गाते हैं।
Jesus, the light of the world. Let's just close.
अपनी आंखें बंद करें और इसे गुनगुनाएं। हम बालकों के समान व्यवहार करेंगे, हम बालक हैं।
Oh, it's such a beautiful light. And it comes where the dewdrop of mercy are bright. Oh, shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Don't you love him? My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary. Just close your eyes and sing it. Worship in the Spirit. Savior, divine. Now hear me while I pray. Take all my sins away. Not let me end this day. Be holy now. While life's dark maze I tread, and grief around me spread. Oh, be thou my guide. Bid darkness turn to day. Why sorrow's fears away?
ओ, मैं जानता हूँ मैं पुराने तरह का व्यक्ति हूँ, मैं पसंद करता हूँ, मैं सोचता हूँ ये सब नया हो गया, छट गया। स्पेनिश नृत्य रॉक एंड रोल नकल करना लाखों मील है। वे पुराने कवि जिन्होंने वे गीत लिखे, पवित्र आत्मा ने कलम को छुआ, लिखना आरंभ कर दिया। ओ प्रभु, एडी प्रूट और उन सब के लिए सोचें, वे महान पेनी क्रॉस भाई, मुझे छोड़कर ना जाओ। ओ दयालु बचाने वाले, मेरी नम्र आवाज को सुन। एक बार उन्होंने उसे लेने का यत्न किया, उसने पेंटिकॉस्टल एल्विस प्रेस्ली के समान नहीं किया। उसने कैडलेक कारों के लिए अपना जन्म सिद्ध अधिकार नहीं बेचा। वो उसके पास आए और चाहते थे कि संसारी गीत लिखें। उसने कहा, मैं किसी भी उस पर ये नहीं करूंगी। कहा, तुम क्यों अंधी हो? जब तुम स्वर्ग जाओगी तो कैसे जानोगी? वो प्रेरणा में घूमी, इसलिए उसने कहा,
I shall know him, I shall know him, and redeemed by his side I shall stand. I shall know him, I shall know how, by the prints of the nails. Otherwise, if I don't see him, I'll feel his hand. I shall know him, I shall know him, and redeem my side I shall stand. I shall know him, I shall know him, by the print of the nails.
क्या इससे आपको उससे प्रेम नहीं होता? हमारे लिए स्थान तैयार करने को गया, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूं, मैं फिर वापस आऊंगा कि तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। छोटे बालक अभी परेशानी में हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को फिर मान रहे हैं, और यहाँ का पास्टर, यदि आप में से किसी का बपतिस्मा नहीं हुआ है तो जल्द तैयार होगा, और कलीसिया की सदस्यता के लिए या जो भी आप करना चाहते हैं आप करें। आपको बपतिस्मा नहीं मिला पवित्र आत्मा का, तो ये रात्रि है कि प्राप्त करें। क्या आप इसका विश्वास नहीं करते? वो आप कहते हैं, भाई बर्नम, ये देर हो गई, आपने बहुत देर तक प्रचार किया है। पौलुस ने सारी रात्रि प्रचार किया, एक रात्रि इसी प्रकार का संदेश, और एक युवक दीवार पर से गिर पड़ा और स्वयं को मार लिया, और पौलुस इसी प्रकार के संदेश से इतना अभिषेक में था, अपनी देह उस पर रखी और जीवन उसमें फिर वापस आ गया। वो अब भी है, यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। क्या आप उससे प्रेम नहीं करते? आइए एक बार और अपने हाथों को उठाकर, मैं उससे प्रेम करता हूँ। ये पियानो वादक कहाँ है? वहाँ, यदि आप बहन, आप जो भी हैं, यदि हो तो आप हमें थोड़ा सा स्वर देंगी। कितने उससे प्रेम करते हैं? अपने हाथ उठाएं, कहें, मैं वास्तव में उससे प्रेम करता हूँ, मैं बस उससे प्रेम करता हूँ, अपने सारे हृदय से मैं उससे प्रेम करता हूँ। अब हम इसे गाएं परमेश्वर की महिमा के लिए। अब अपनी आंखें बंद करें हमारे साथ स्वर की ओर, मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ। हम उसकी आराधना करेंगे। जब आप प्रचार करते हैं, काट और छांट और इस प्रकार से खींचते हैं कि ये मल्लम है जो परमेश्वर उंडेलता है, चंगा करता है, गिलाद में, बाम में, प्राणों के लिए। और इसमें सब मनुष्य जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो जब आपको प्रेम है एक दूसरे से। ये ठीक बात है। यदि हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते तो हम किसे देखते हैं? तो हम कैसे परमेश्वर से प्रेम करने जा रहे हैं जिसे हम नहीं देख सकते? समझे?
God bless you.